कि हम सब अपने देश से प्रेम करते हैं, सारे लोग देश प्रेमी होते हैं, लेकिन एक सोल्जर के लिए, एक आर्मी मैन के लिए देश प्रेम क्या होता है? नॉर्मली हमारे देश में कहीं भी कुछ भी इशू हो गया, भगवान न करे कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, जो नॉर्मल सिविलियन होती है सबसे पहले खुद की सुरक्षा के बारे में सोचती है, तो उस सिचुएशन में एक आर्मी मैन की क्या ड्यूटी होती है, सबसे पहले वो क्या सोचता है? कई बार तो ऐसा भी है कि मतलब -30-40 डिग्री टेम्परेचर में भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, एंड कई बार एक्सट्रीम हीट में भी वो अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, तो ऐसे में उनका बॉडी कैसे सर्वाइव करता है सर?
जैसे हमारे टाइम में नीलम संजीव रेड्डी, ही वॉज द प्रेसिडेंट, तो उन्होंने साइन करके एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसमें लिखा होता है, तो नेम लिखा होता है और उसमें सिग्नेचर होता है,
दैट इज कॉल्ड
इंडिविजुअल साइन कर, जितने भी हर बार 250-300 जितने भी ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं आर्मी के, इसी प्रकार नेवी के, इसी प्रकार एयरफोर्स के, सभी को, बिकॉज इट इज द प्रेसिडेंट्स कमीशन दे कॉल इट। मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि टीम वर्क है, आर्मी में देखा जाता है कि हमेशा टीम वर्क के तौर पे कोई भी एक्शन होगा, ऑपरेशन होगा, पूरी टीम काम कर रही है, उसका क्रेडिट पूरी टीम को मिलेगा। कोई भी एक व्यक्ति बोले मैं क्रेडिट ले रहा
हूँ,
हाँ, तो मैं, अगर कोई व्यक्ति बोले मैं कर रहा हूँ काम, मैं ऐसा करूंगा, तो उसको पसंद।
हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप खरे सर हैं, जिनसे आज हम आर्मी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे।
नमस्कार, थैंक यू।
तो सर, मेरा सबसे पहले मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि हम सब अपने देश से प्रेम करते हैं, सारे लोग देश प्रेमी होते हैं, लेकिन एक सोल्जर के लिए, एक आर्मी मैन के लिए देश प्रेम क्या होता है?
जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने
जी।
आर्मी में क्या होता है, जैसे मैं ऑफिसर्स की बात करूं, अगर ऑफिसर्स का जब ट्रेनिंग होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में
जी,
वो सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, और जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तब उसके बाद एक वहाँ पर चेटवुड हॉल है, तो जो पासिंग आउट परेड होती है उसके बाद जब ऑफिसर बन जाते हैं तो एक फाइनल स्टेप वहाँ पर होता है, और वहाँ पर एक ओथ लेना पड़ता है। वो ओथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, चेटवुड हॉल में जो है था, वो ओथ है 3 लाइन का है, द सेफ्टी वेलफेयर ऑनर ऑफ माय कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज इन एवरी टाइम, द सेफ्टी ऑनर वेलफेयर ऑफ द मैन आई कमांड कम्स नेक्स्ट, द सेफ्टी वेलफेयर ऑनर ऑफ माय ओन सेल्फ कम्स लास्ट ऑलवेज इन एवरी टाइम। यानी कि देश की सुरक्षा, देश के सम्मान सबसे पहले, उसके बाद जो हमारे अधीनस्थ हैं जिनको हम कमांड कर रहे हैं, जो सोल्जर्स हैं उनका, और लास्ट में अपना स्वयं की सुरक्षा और सम्मान, ये क्रम होता है हमारी ड्यूटी करने का।
तो सर, क्या बात है, मतलब आर्मी में आपको मतलब सबसे पहले देश और सबसे लास्ट खुद को रखना सिखाया जाता है
जी।
नॉर्मली हमारे देश में कहीं भी कुछ भी इशू हो गया, भगवान न करे कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, जो नॉर्मल सिविलियन होती है सबसे पहले खुद की सुरक्षा के बारे में सोचती है, तो उस सिचुएशन में एक आर्मी मैन की क्या ड्यूटी होती है, सबसे पहले वो क्या सोचता है?
सबसे पहले एक्चुअली देश के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जो हम लोगों का मिशन है, भले कोई वॉर फ्रंट में है या कोई भी ऑपरेशन में है, जहां भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उस ड्यूटी में पूरा ध्यान लगाना है, क्योंकि भले फैमिली पीछे से है, कई बहुत सारे हमारे जवान होते हैं, सोल्जर्स होते हैं जो वॉर फ्रंट पे आगे लड़ाई कर रहे होते हैं, और कई बार उनको जान का बलिदान भी देना पड़ता है अपना, फिर भी उनका पूरा ध्यान अपना ऑब्जेक्टिव की ओर रहता है, जो उनको काम दिया गया है उसकी ओर रहता है, क्योंकि घर के बारे में, फैमिली के बारे में सोचेंगे तो उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा।
उनकी पूरी फैमिली उनका पूरा देश है
जी।
ओके सर, तो सर आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, आपने कैसा स्टार्ट किया, आर्मी ज्वाइन करने का ख्याल आपके माइंड में कैसे आया?
एक्चुअली सच बताऊं तो मेरे पास आर्मी ज्वाइन का कभी मैंने सपना नहीं था, मेरा कोई ड्रीम नहीं था कि मैं कभी भी, मैं हमेशा सोचता था आई विल बी अ टीचर, बिकॉज आई हैव बीन अ टॉपर इन एकेडमिक्स थ्रू आउट माय एजुकेशन करियर राइट अप टू माय पोस्ट ग्रेजुएशन। एक मेरा फ्रेंड था, उसने भी MSc किया था फिजिक्स में, तो उसको बहुत शौक था आर्मी में जाने का, वो बहुत से स्पोर्ट्समैन था, NCC लिया था उसने, तो वो 2 बार इंटरव्यू के लिए गया SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हर बार आके मेरे को बताया करता था कि ऐसे जाते हैं, ऐसे इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है, और वो खास बात थी कि वहाँ आने जाने का रेलवे फेयर देते हैं वो लोग, और ठहरने का पूरा इंतजाम करते हैं, आपको कुछ खर्चा नहीं करना है। तो उसने मेरे से कि आप भी फॉर्म भर दो और चले जाओ इंटरव्यू अटेंड करने। मैं कहा नहीं, मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे तो आर्मी में जाने नहीं है। फिर भी वो बहुत इंसिस्ट किया, उसने वो फॉर्म भी ले आया और भरवा के आगे भेज भी दिया। उसके बाद मेरे इंटरव्यू कॉल आ गया। अब इंटरव्यू कॉल आ गया तो मैं चलो वो आते हैं, देखाते हैं, अटेंड कर लेंगे इंटरव्यू कैसा है। SSB इलाहाबाद में मेरा इंटरव्यू हुआ था, और इंटरव्यू में मैंने मोस्ट ऑनेस्टली कैजुअली कह लीजिए बहुत ज़्यादा उसमें ये नहीं बताया कि मैं बहुत देशभक्ति में इंटरेस्टेड हूँ, मैं देश के लिए जान दे दूंगा। मैंने सिंपल उनको जो भी टेस्ट थे वो बिल्कुल ईमानदारी से किए।
क्वेश्चन क्या था सर उनका इंटरव्यू, उन्होंने क्या क्वेश्चंस किए थे आपसे?
इंटरव्यू में एक्चुअली बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, 5 दिन का इंटरव्यू होता है वो, 5 डेज, तो उसमें बहुत सारे फिजिकल टेस्ट होते हैं, ग्रुप टेस्ट होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, लेक्चरेट होता है, और फाइनल डे जो होता है इट इज कॉल्ड इंटरव्यू, जो कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसको। उन कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि जिन लोगों ने भी इंटरव्यू लिया है, अलग अलग ऑफिसर्स इंटरव्यू लेते हैं, GTO होते हैं, IO होते हैं, अलग अलग 10-12 ऑफिसर होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं हर के, तो टीम, तो टीम में एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रेसिडेंट होता है बोर्ड का, तो सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन्होंने जब मेरे से पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्मी, तो मैंने उन्होंने क्लियर बोल दिया कि मेरे को तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि आप भर दो फॉर्म, तो मैंने भर दिया।
ठीक है,
आई टू, मुझे लगा था कि अब तो वापस चले जाएंगे, सिलेक्शन तो होना नहीं है
ना, कोई ट्रुथ
बता दिया। और उसके बाद जब नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट अनाउंस होता है उसके बाद, तो उसमें चेस्ट नंबर देते हैं हर एक को, हर एक कैंडिडेट को, तो मेरा चेस्ट नंबर पुकारा गया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कहीं गलत तो नहीं हो गया, मेरा तो कुछ ऐसा किया ही नहीं कि जो सिलेक्शन हो जाए। खैर बाद में उन्होंने मतलब मेरे को सिलेक्ट किया, और एक मेडिकल होता उसके बाद, तो मेडिकल 12 डेज मेडिकल हुआ वहाँ, मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट के, आँख के, कान के, नाक के, बोन्स के, सारे स्पेशलिस्ट एक एक दिन चेक करते हैं,
और उसमें
12 डेज, इट टुक 12 डेज। उसके बाद वो मेडिकल जो फिट होते हैं उनको दांत भी चेक करते हैं, दांत भी किसी के प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम, आंख में, तो रिजेक्ट कर देते हैं। अगर SSB पास भी कर लिया है और कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो रिजेक्ट,
क्योंकि सर देश की सुरक्षा की बात है।
एक एक चीज वो बिल्कुल ठोक बजा के लिए कहते लेते हैं। उसके बाद फिर वो मेडिकल कम्प्लीट होने के बाद घर भेज देते हैं, कि उसमें क्या होता है मेरिट लिस्ट बनाते हैं, जितने भी सीट्स हैं उतनी सीट्स के अनुसार मेरिट लिस्ट बनाते हैं सबकी, उसमें मेरिट लिस्ट में का नाम आता है, उनको वो ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं
जी।
तो मेरे को ऐसे वो घर भेज दिया, और मैं फिर वहाँ एक कॉलेज में पढ़ा रहा था जबलपुर में, तो मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली वापस। उसके बाद फिर करीब 1.5-2 महीने बाद एक टेलीग्राम आया वहाँ कि आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून। तब मैं गया ट्रेनिंग की वहाँ,
क्योंकि आपको उसमें जाना नहीं था, आप इंटरेस्टेड नहीं थे, आप उम्मीद भी नहीं लगा रहे थे कि कोई मतलब ऐसा टेलीग्राम आएगा,
कोई उम्मीद नहीं थी, वो अचानक टेलीग्राम आ गया।
ओके, तो ये आप डेस्टिनी ने डिसाइड किया आपका करियर, आप कह सकते हो।
यस, इट इज गॉड्स प्लान, आई कैन से डेस्टिनी, और ईश्वर की जहाँ इच्छा होती है वो सबसे अच्छी होती है, भले हम जो भी सोचें लेकिन ईश्वर जो हमारे लिए करता है वो बहुत अच्छा है।
अदरवाइज सर कहते हैं जो मतलब इंटरव्यू में जाते हैं जिनको माइंड में रहता है कि मुझे सेलेक्ट होना है, एनी हाउ मुझे सेलेक्ट होना है, तो वो थोड़ा सा बनावटी आंसर्स भी दे सकते हैं, लेकिन जैसे आपने फ्रंट में कहा कि मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ, बस ऐसे ही मैं आ गया हूँ दोस्त के कहने पे, तो मे बी उन्हें ये बात अच्छी लगी हो कि आप सच्चाई की राह पे चल रहे हो।
जी, क्योंकि बाद में मैंने ये बात पता की थी जो काफी सर्विस 10-12 साल सर्विस के बाद कि जो ऑफिसर्स इंटरव्यू कंडक्ट कर क्या देखते हैं, वो मैंने अपने गेस्ट बताया, तो मुझे बताया गया कि जो अच्छा मैंने एक और बात है, कभी गेम स्पोर्ट्स में कोई पार्ट नहीं लिया, कोई NCC में पार्ट नहीं लिया, मैं 1 किलोमीटर दौड़ा कभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो वो बताते हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितनी गेम्स में पार्ट लिया, कितनी हाइट है आपकी,
वो
ट्रेनिंग है, ये ट्रेनेबल क्वालिटीज हैं। एक होती ट्रेनेबल क्वालिटीज जिसको कि ट्रेनिंग के दौरान वो कर सकते हैं, उनको पता है। मेन जो देखा जाता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में वो देखा जाता है कि पर्सनैलिटी कैसी है, जैसे कि कोई आर्गुमेंटेटिव है, हर चीज में वो क्वेश्चन कर रहा है, तो वैसे लोग नहीं चाहिए उन्हें, किसी भी डिपार्टमेंट नहीं चाहिए। जैसे सीनियर ने कुछ बोला तो नहीं ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, ऐसे क्यों करेंगे, ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए। तो आर्मी इज ए टीम वर्क,
दे वॉन्ट की टीम वर्क, डिसिप्लिन,
हाँ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रहना है उसमें जरूरी है। कि आर्मी में कोई भी जैसे निर्णय होता है, जो सीनियर हैं, जो कमांडर हैं, उन्होंने कोई निर्णय लिया मालूम, अब कोई जो टीम मेंबर हैं वो उनको लग रहा है नहीं ये किसने कहा अटैक बाएं से होगा, उसने कहा नहीं हम तो दाएं से होना चाहिए, तो वो वहां बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, वही जैसे मैं सोचता हूँ कि दाएं से करेंगे तो ये फायदा होगा। लेकिन फिर भी जो सीनियर ने, जो कमांडर ने निर्णय लिया कि नहीं वो अटैक बाएं से होगा, तो उसको फिर फॉलो करना है कि अटैक बाएं से होगा,
जो कमांडर ने आपको कमांड दे दिया आपको फॉलो
उसको मानना है। उसमें फिर ये नहीं सोचना कि नहीं यार ये तो गलत बोल रहे हैं, अब ये सीनियर को जानते कुछ नहीं है,
डिबेट नहीं होना,
हाँ डिबेट नहीं होना, और डाउट नहीं करना, जो सीनियर ने बोला है वो सही है, उसको पूरी श्रद्धा से पूरी लगन से हमें इम्प्लीमेंट करना
चाहिए। राइट
जी,
तो सर आते हैं आपकी ट्रेनिंग पे, इसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तो ट्रेनिंग में क्या होता है?
ट्रेनिंग एक्चुअली सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग होती है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग होती है, सबसे टफ ट्रेनिंग होती है फिजिकल मैटर्स में। और जब मैं वहाँ पर गया तो एक और बात बता दूँ आप लोगों को मैं, कि मेरा उसमें मन कर रहा था कि मैं दो चार दिन के अंदर ही वहां से छोड़कर रिजाइन करके वापस आ जाऊंगा।
तो ऐसा किसी का मन करता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है?
उसमें क्या होता है, वहां पर जब भी कोई भी बच्चा सिलेक्ट होता है केलू, तो उनके पेरेंट्स को एक बॉन्ड साइन करके देना होता है।
पेरेंट्स को
बॉन्ड में दो चीज खास लिखी होती है कि मेरे बच्चे को अगर कोई इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, उसकी डेथ भी हो जाए, तब भी मैं गवर्नमेंट से कोई क्लेम नहीं करूंगा, नो लीगल क्लेम। दूसरा पॉइंट रहता है उसमें कि अगर ट्रेनिंग के दौरान मेरे बच्चे ने ट्रेनिंग छोड़ के बाहर आ जाता है, तो मैं गवर्नमेंट को जितना भी खर्चा हुआ है ट्रेनिंग के ऊपर उस दौरान में, मैं वो पे करूंगा। और वो लाखों रुपए में होता है, जो ट्रेनिंग का कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे पता था मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ट्रेनिंग का पैसा भर पाएंगे, तो इसलिए मैंने केवल ईश्वर का नाम लिया और ट्रेनिंग करता गया।
बेसिकली सर गवर्नमेंट भी ये चाहते हैं कि आप मेंटली रूप से पूरा प्रिपेयर हो तभी आ पाओ, क्योंकि एवरीबॉडी नोज कि बहुत ही टफ होता है आर्मी की ट्रेनिंग जो होती है, और आप बैकआउट करोगे तो उन्हें काफी लॉस होगा।
ये ट्रेनिंग बहुत महंगी, ये ट्रेनिंग कंडक्ट करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज, कभी आप लोग जाएं अगर देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में है, तो वहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, इतना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ट्रेनिंग के ऊपर एक एक चीज वहां, कपड़े से लेकर के, खाने से लेकर के, और जो भी सुविधा, जो ट्रेनिंग इक्विपमेंट है, जो ट्रेनिंग खर्च, बहुत ज्यादा खर्च होता है वो।
तो ट्रेनिंग के दौरान फिर ऐसा क्या हुआ था सर कि तीन चार दिन में आपको लगा कि मैं बैकआउट कर जाऊं?
एक्चुअली वहां पर ट्रेनिंग जो होती है ना, जैसे कॉलेज में बोलते हैं रैगिंग हो रही है, आप सुनते हैं, वो रैगिंग होती है केजी क्लास की, जो वहां पर रैगिंग होती है पीएचडी क्लास की होती है। वो ऐसी रैगिंग कह सकते हैं आप, इट इज टू मेक यू बोथ फिजिकली एंड मेंटली टफ। वहां जो सीनियर्स होते हैं, बाद में हम लोगों को लगता है, उस टाइम लगता है कि बहुत ही खराब है, बहुत ही परेशान कर रहे हैं, लेकिन बाद में हमें लगता है कि इंसान नहीं, बिल्कुल इंसान नहीं समझते, दे ट्रीट यू लाइक एनिमल्स, यू कैन सी, इतना ज्यादा ह्यूमिलेट करेंगे, इंसल्ट करेंगे, और फिजिकल मतलब जैसे क्रॉलिंग करना, जैसे कहीं पर मतलब इतना ज्यादा फिजिकल एग्जॉस्ट हो जाए, जैसे वहां पनिशमेंट्स होते हैं, कई प्रकार के पनिशमेंट्स होते हैं आर्मी में, जैसे साइकिल होती है वहां, जो क्लासेस जो होते हैं ट्रेनिंग में, वो एक क्लास 2 किलोमीटर दूर, दूसरी क्लास 5 किलोमीटर दूर है, इतना बड़ा कैंपस है। तो साइकिल पर जाना है, और साइकिल भी बिल्कुल मतलब पुरानी कंडीशन की साइकिल होती है, जो कभी भी खराब हो जाए।
अच्छा,
तो आपको दौड़ के जाना फिर उसके बाद।
तो सर इससे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आते हैं, ट्रेनिंग में सबसे पहले क्या मतलब आपसे करवाया गया था?
देखिए ट्रेनिंग वहां पर सबसे पहले क्या है ना, वहां पर ट्रेनिंग
पहले दिन फिजिकल तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं डालते
क्या होता है, एक सबसे बड़ा पार्ट है फिजिकल ट्रेनिंग, बोलते पीटी बोलते इसको,
ठीक है।
पीटी होता है मॉर्निंग में 6 o'clock से 7 o'clock, 1 घंटे का पीटी होता है। पीटी में दौड़ना है और भी फिजिकल एक्सरसाइज जो कराते हैं, तो दौड़ वहां पर जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो बहुत ही टफ एंड होते हैं, और वो बच्चों को सबको टफ बनाते हैं। जैसे कोई एक, मैंने अपनी लाइफ में 1 किलोमीटर कभी नहीं भागा स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन वहां पर शुरू में उन्होंने कहा 2 किलोमीटर दौड़ना है, तो मैंने कहा 2 किलोमीटर तो बहुत मुश्किल दौड़ना, फिर मैंने देखा लेकिन सब लोग दौड़ रहे हैं, 20, 25, 50 लोग हैं तब दौड़ रहे हैं, तो मैं भी दौड़ रहा हूँ, मुझे लगा ये भी तो इंसान है, ये भी हमारे साथ 2 हाथ पैर इनके, तो दौड़ते आ रहे हैं इनके साथ दौड़ रहे, और धीरे धीरे ग्रेजुअली, जैसे आपने कहा ना, वो एकदम ग्रेजुअली धीरे धीरे लेवल ऑफ टफनेस इंक्रीजेस, बट वो बहुत फास्ट होता है, जैसे ऐसा नहीं कि मतलब 1 महीने के अंदर वो बिल्कुल पीक पे आ जाता है।
बेसिकली वो इस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं कि किसी भी सिचुएशन में आप फाइट कर सको और रेडी रहो,
सर्वाइव कर सकें, जैसे फाइट भी कर सकें, मतलब आपने गिव अप ना करें, तो मेंटल फिटनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।
मेंटल फिटनेस की आप बात कर रहे हो सर, तो कई ऐसा कहा जाता है कि आपका माइंड जो है वो बॉडी को कंट्रोल करता है, तो कई बार ट्रेनिंग के दौरान आपका मतलब हिम्मत जवाब दे देगा कि भाई अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो वैसा में मतलब मेंटली भी स्ट्रांग होना कितना जरूरी है, क्या इस पे भी काम किया जाता है आर्मी में?
एक्चुअली देखिए इसमें क्या होता है ना, एक जो सांस में जो ट्रेनिंग करते हैं लोग, मैं अपनी एग्जाम्पल बताऊं लाइफ का, मुझे उन लोगों से बहुत सपोर्ट मिला। सपोर्ट कैसे मिला, वहां पर एक जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं BPET, बैटल प्रोफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी टेस्ट। उसमें 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक होता है 5 किलोमीटर रन, उसमें 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए पूरा आपको राइफल के साथ, पूरा इक्विपमेंट के साथ, हैवी बूट्स के साथ दौड़ना है, उसकी टाइमिंग होती है कि 15 मिनट 16 मिनट, इतने मिनट में कंप्लीट करना है, और ग्रेडिंग होती है, इतने मिनट में कंप्लीट किया तो एक्सेलेंट, उसके बाद गुड, उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री, और उसके बाद भी फेल, जिसने उसमें मैक्सिमम टाइम में नहीं कंप्लीट किया फेल, मतलब उसको दोबारा करना है वो
स्टार्टिंग से,
स्टार्टिंग दोबारा। तो वो उसमें एक टेस्ट होता है 9 फीट डिच बोलते हैं उसको। 9 फीट डिच का मतलब है कि 9 फीट लंबी एक खाई जैसे होती है और उसके सामने की साइड में, वो तो गहरी है, 4-5 फीट गहरी होगी और उसके सामने की साइड में एक लकड़ी की बल्ली लगी होती है, बहुत ही मोटी मजबूत बल्ली लकड़ी की, प्लैंक, वुडन प्लैंक, और जो ट्रेनीज हैं उनको दौड़ते हुए आना एक तरफ से और जंप करके 9 फीट जंप करके छलांग लगा के उस तरफ पहुंचना, दैट इज अ टेस्ट। अब क्या होता है जब
वो सारा गन वगैरह,
गन सब कुछ लेके पूरा, अब जब दौड़ते हुए आते हैं तो क्या होता है साइकोलॉजिकली वो बल्ली दिखती है वुडन प्लैंक, वो लगता है इससे टकरा गए तो इंजरी हो जाएगी, तो ध्यान उसमें जाता है तो एकदम स्पीड कम हो जाती है और गिर जाते, जंप नहीं कर पाते बहुत बार। अच्छा, कई लोगों को देखा मैंने, जंप भी कर गए घुटने में चोट लगी, घुटने में फ्रैक्चर हो गया एकदम से, इतनी फोर्स दौड़ते हुए आ रहे, इतनी स्पीड से दौड़ते हुए आते हैं, तो देख रहे थे कुछ घुटना टूट गया इसका, ये हॉस्पिटल चला गया, तो मुझे बहुत डर लगता था कि देखो अब वहाँ तक दौड़ते दौड़ते आते हैं और फिर डर के मारे वो जंप नीचे। अब वो जो उस्ताद बहुत डांटते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं वो डांटते हैं, पनिशमेंट देते हैं इस बात करना ही है। अब मेरे साथ की जो ट्रेनर्स थे उन्होंने मेरे को बताया कि देखो इसमें डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं होता है, तुम्हारी नॉर्मल जंप करने की जो छलांग लगाने की है 9-10 फीट तक आप छलांग लगा सकते हो। तुमने कैसे, तो उस शाम के टाइम गेम्स पीरियड होता है, गेम्स पीरियड, उसमें उन्होंने बताया कि देखो यहाँ पर कोई डिच नहीं है, ग्राउंड में 2 रुमाल रखे उन्होंने 10 फीट की दूरी पर, उन्होंने यहाँ कोई गड्ढा नहीं है, डिच नहीं है, अब आप दौड़ते हुए वहाँ से आते हैं जंप लगाते हैं, तो देखो हाँ आराम 10 फीट जंप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो उसने कहा आप उसको मत देखो जो वुडन प्लैंक है, उसको देख के मन में डर आता है
जी,
उसको देखना नहीं है, आप सीधा आगे देखो, ऊपर देखो और जंप लगा दो यहाँ से। तो जंप लगाया मैंने, हो गया, इट हैपेंड। तो इसमें क्या है, मन में एक ऐसी ओरिएंटेशन दिमाग की, मन की हो जाए कि हमें डर मन से निकल जाए
जी,
दैट इज इट।
तो सर मतलब मैं तो सैल्यूट करती हूँ अपने इंडियन आर्मी को कि मतलब इतना वो डिफिकल्ट फेस को भी सिर्फ हमारे कंट्री के लिए वो फेस कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में भी। और कई बार तो ऐसा भी है कि मतलब -30-40 degrees टेम्परेचर में भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, एंड कई बार एक्सट्रीम हीट में भी वो अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, तो ऐसे में उनका बॉडी कैसे सर्वाइव करता है सर?
एक्चुअली क्या है ना, कोई भी जो लिविंग कंडीशंस हैं, टेम्परेचर है, जैसे आपने कहा गर्मी है, एक्सट्रीम ठंड है, इन सब चीज़ों का ध्यान तब आता है जब आदमी खाली दिमाग हो उसका, वही क्या सोचे इसके बारे में क्या है, अब हम देख रहे हैं रूम लाइट बंद होगी घर में, अब जनरेटर नहीं आया, अब ये एसी चल रहा है, तो अगर हमारा दिमाग खाली और कम्फर्ट की ओर ध्यान जाएगा, अब जिसका ऑब्जेक्टिव कम्प्लीट है, भाई ये मुझे ये काम करना है, ये ड्यूटी करनी है, तो उसका पूरा ध्यान ड्यूटी उस कमिटमेंट की ओर रहता है कि हमें ये ऑब्जेक्टिव, ये टास्क दिया है, ये काम हमें करना है, तो वो काम उस हिसाब से ध्यान उसी को रहेगा,
रास्ते में आने वाले कोई भी प्रॉब्लम्स पे नहीं ध्यान जाएगा।
तो ये होता है, कहते ना किसने बोला था कि यू नो ऑब्स्टिकल्स आर दोज थिंग्स व्हिच यू सी व्हेन यू लूज योर साइट ऑफ द गोल, जो आपका एम है, गोल है, उससे अगर आपका ध्यान हट जाएगा तो आपको ऑब्स्टिकल दिखाई देने लगेंगे, अगर आपका ध्यान केवल ऑब्जेक्टिव पर है, गोल पर है, तो आपको ऑब्स्टिकल दिखाई नहीं देंगे।
तो इसमें सर फिजिकल ट्रेनिंग में भी ऐसा भी शायद मैंने सुना है कि एक्सट्रीम हीट में भी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि आप सर्वाइव कर पाओ, क्रॉलिंग वगैरह करने को कहा जाता है काफी ज्यादा रेत वगैरह पे, बहुत गर्म रेत होता है, तो ऐसा कुछ होता है सर?
एक्चुअली देखो ट्रेनिंग में तो सब प्रकार की, जो क्रॉलिंग इज अ वेरी स्मॉल थिंग जो है ना, बाकी ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग की टफनेस है वो टफनेस तो एक्चुअली वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद आप जान सकते हैं, जैसे कि हम लोगों का एक कैंप होता है, अलग अलग कैंप, शुरू में 2 दिन का कैंप होता है, फिर 5 दिन का होता है, फिर 10 दिन का, 11 डेज का फाइनल कैंप, इट इज कॉल्ड चिंडिट्स। 11 डेज का जो कैंप होता है उसमें पूरे 11 दिन, दिन में, रात में, दोपहर में, शाम में चलना है, थोड़ी देर रुक जाएंगे, 2 घंटे का ब्रेक दे देंगे, फिर चलना है, फिर 6 घंटे चलना है, फिर 1-2 घंटे का ब्रेक दे देंगे। उसमें क्या होता है, इतना
मतलब दिन रात आपको
दिन रात पहाड़ों में, जंगलों में, पानी में, हर जगह चलते जाना, वो पूरे राइफल है, पूरे बूट्स पहने हुए हैं, पूरे इक्विपमेंट लगा हुआ है, और उसमें क्या है एक टाइम केवल फ्रेश खाना मिलेगा जो बन के आता है, साथ में गाड़ी चलती है, और एक टाइम आपको खुद खाना बनाना है। बनाना कैसे, वो दाल चावल सूखा टिफिन बना के दे देते हैं, और जहाँ पर भी जंगल में रुके हुए हैं वहीं पर आपको सूखी लकड़ी इकट्ठी करके लकड़ी जलाना है, उसी टिफिन को रखना है कि उसी में खाना बन जाएगा, जो खिचड़ी बन जाएगी उसको खाना है, उसका भी टाइम है आपको 10-15 मिनट, उसके बाद जो है ना वो जो कैप्टन विसिल बजा देंगे खत्म। तो जब तक लोग लकड़ी ढूंढ पाते हैं उसमें आग लगा विसिल बज गई तो वहीं फेंक देते हैं उसको, फेंक के टिफिन उल्टा करके चल देते हैं, क्यों बनाने का टाइम नहीं है उसको, इतना टाइम नहीं बनाने का। दूसरा जहां पर भी रुकना है, रुकने कैसे, रुकने में सो जाएंगे आप, रुकने के लिए बोले ट्रेंच खोदना आपको, ट्रेंचेस जहां पर जैसे वॉर होती है ना, तो वॉर में ट्रेंच के अंदर
क्या होता है सर,
ट्रेंच मतलब गड्ढा होता है एल शेप, एल शेप गड्ढा होता है उसमें, मतलब इतना गड्ढा होता है कि आदमी बैठ जाए,
तो आप 3.5 फुट चलते चलते तो आपको गड्ढे
तो गैंती दे देंगे, फावड़ा दे देंगे आपको, वहां गैंती से खोदना है, तो आपने गैंती देखिए जंगल में कोई भी जगह वहां इतना गड्ढा खोदना 3.5-4 फीट का गड्ढा गहरा, और जिसमें आदमी बैठ जाए पूरा, इतना गड्ढा आपने पूरा, ऐसे नहीं कि थक गए चल के आए तो हम हिम्मत नहीं है, पूरा खोदना है। खोदने के बाद वो अफसर आएंगे, चेक करेंगे कि आपने सही खोदा कि नहीं खोदा है, उसके बाद बोलेंगे ठीक है चेक हो गया, आप इसको कवर कर दो पूरा, पूरी मिट्टी अंदर रख दो इसके, चलो आगे चलते हैं अभी।
मतलब आप लोग 11-12 डेज आप लोग कंटिन्यू चल रहे
लगातार
ढंग से, आप लोग खाना पीना भी नहीं खा रहे हो, खुद से प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, प्लस आपको रुक के अगर रेस्ट करना है तो रेस्ट करने के लिए पहले आपको गड्ढे खोदने हैं।
ये बीच में एक एक्टिविटी है, हर बार नहीं करना, एक एक्टिविटी, जैसे उसमें क्या होता है हम लोग जा रहे हैं कहीं पर, जैसे अगर रात को या दिन को टाइम मिला कि भाई ठीक है अभी एक घंटे कुछ ऐसा रेस्ट टाइम कह लो, तो उस टाइम जहां भी सड़क किनारे उसमें पहाड़ पर वहीं पर हम लोग यूनिफॉर्म पहने पहन जमीन लेट जाते हैं, वहीं नींद आ जाती है, एकदम सो गए,
तो एकदम सिचुएशन के लिए आप लोगों को
फिर सीटी बजेगी तो एकदम उठना है, जैसे विसिल बजी एकदम उठ के रेडी हो जाओ, कोई ऐसा नहीं कि बिस्तर है कुछ नहीं, बिस्तर भी नहीं, जमीन में घास है, छोटे मोटे पत्थर भी पड़े हैं, वहीं नींद आ जाती है।
इसीलिए कहते हैं कि आर्मी वाले जो होते हैं रिटायरमेंट तक एकदम टफ एंड डिसिप्लिन वाले हो जाते हैं, कि भाई आर्मी वाला है तो एकदम डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट वे में बात कर सकता है।
एक और इंसिडेंट है उसका कि जब हम जा रहे थे रात में इसी 11 डेज कैंप में
जी,
जो कि मुझे अभी भी याद है कि बहुत रात करीब 2 बजे होंगे, हम लोग चलते जा रहे थे वहां पर देहरादून के आसपास पहाड़ बहुत सारे हैं, तो बीच में कोई नाला बह रहा था और मुझे बहुत प्यास लग रही थी, रात को देख रहा कुछ चमकता हुआ पानी दिख रहा है नीचे, और उसके बाद मुझे देखा हम लोग को मग होता है, वाइट कलर का इनामिल मग होता है, उससे आपको चाय भी पीना है, पानी भी पीना है, नहाना भी, सब काम करना है, बाथरूम सब काम के लिए वही मग है, ओनली वन मग फॉर एवरीथिंग। तो उस मग को निकाला और निकाल के मैंने नीचे डुबाया, जो भी पानी भर रहा है देखा नहीं कैसा गंदा पानी है, कीड़े हैं क्या है उसके अंदर, गंदा है, उसमें निकाले कर पूरा पी लिया, प्यास बहुत इतनी तेज ज्यादा प्यास लगी थी, और पानी बॉटल एक वाटर बॉटल होती छोटी खत्म हो जाता पानी वो, तो वो हरदम भरने को नहीं मिलता है, तो वही पानी पी लिया क्योंकि प्यास बहुत लगी थी।
ये इंसिडेंट किसी और ने भी कहा था बहुत पहले, वो मेरे मतलब चाचा के बेटे ही लगते हैं, वो भी मिलिट्री में, तो कहते हैं कि भाई नाला का पानी बह रहा था, इतनी टफ ट्रेनिंग थी कि हमने वो पी लिया, तब मैंने उन पर ट्रस्ट नहीं किया था कि कोई नाला का पानी थोड़ी पी सकता है।
हम लोग आरओ का पानी पीते हैं, फिल्टर का पानी पीते हैं, सुनते साफ है कि नहीं है,
तो बेसिकली बॉडी आप लोगों की इस लेवल पे चली जाती है कि किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे एक्सट्रीम हीट हो या ठंड हो या आप पानी कैसा पी रहे हो,
क्योंकि बॉडी में इतनी हीट हो जाती है, इतनी ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन है, इतनी ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन है कि उस बात को बॉडी कभी बीमार नहीं पड़ता, कोई कोई प्रॉब्लम बुखार नहीं आता किसी को, कुछ नहीं होता पूरी ट्रेनिंग के टाइम में।
अच्छा, बेसिकली आर्मी के ऊपर या हमारे देश की मिलिट्री और सोल्जर्स के कंधों पे हमारे पूरे देश की सुरक्षा रहती है, इसलिए शायद इतनी टफ ट्रेनिंग होती है कि भाई आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है।
जी, इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा, ट्रेनिंग जो होती टफ वहां पर खाना भी कितना ज्यादा न्यूट्रिशियस मिलता है। अभी ब्रेकफास्ट आज मैं बताऊं, अगर जो हम लोग पीटी ड्रिल करने के बाद ब्रेकफास्ट, उतना ब्रेकफास्ट मैं कभी खा ही नहीं सकता हूं आज की तारीख में। वहां पर जब ब्रेकफास्ट खाने मेस में बैठते थे तो एक पॉरेज की प्लेट होती, दलिया एक प्लेट, 4 टोस्ट होते हैं, उसमें जितना चाहे बटर लगा लो, मक्खन जैम सब लगा लो, 4 टोस्ट वो कंप्लीट हम लोग खा लिया करते थे। उसके बाद नॉन वेजिटेरियन है तो उसको एग्स मिलेगा, ऑमलेट मिलेगा, 2 अंडे 4 अंडे जितने भी आपको खाना है ऑमलेट खा लें, नहीं है तो आप वेजिटेरियन में समोसा कटलेट वो मिल जाएगा, उसके बाद दूध का ग्लास मिल जाएगा, इतना ज्यादा ब्रेकफास्ट
सर ये
आज नहीं खा सकते हम लोग।
ये भी ऐसा मैंने सुना है कि अगर आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो मैटर नहीं करता, आपको जो देगा आपको खाना पड़ेगा, मतलब वेजिटेरियन को भी नॉन वेज खाना
नहीं, नहीं ऐसा कंपल्शन नहीं, ऐसा कभी
ऐसा नहीं,
वेजिटेरियन को वेजिटेरियन फूड नहीं, हाँ इसका कंपल्शन नहीं है, कोई ड्रिंक्स का कंपल्शन नहीं है कि आपको ड्रिंक पीना है आर्मी में,
क्योंकि उसमें देते हैं
नहीं, ये लोगों को ऐसी मतलब अफवाह फैला दी कह लो, ऐसा नहीं।
एंड सर कहते हैं आर्मी की जो आपकी ट्रेनिंग हुई हो तो काफी टफ हुई, तो आर्मी में अलग अलग पोजीशंस होती है, अलग अलग पोस्ट होते हैं, तो सबके लिए ट्रेनिंग इक्वल ही होती है?
हाँ एक्चुअली आर्मी में ट्रेनिंग सब बेसिक ट्रेनिंग है जो आर्मी में होती है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जितने भी कमीशन ऑफिसर्स हैं आर्मी के, एक तो अदर रैंक्स होते हैं जैसे सिपाही हैं, हवलदार हैं, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, रिक्रूटमेंट भी अलग होता है। ये जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग है ऑफिसर्स के लिए, सारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग वहाँ पर होती है, जो परमानेंट कमीशन एक बोलते हैं, एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन,
उसकी ट्रेनिंग फाइट कर,
हाँ चाहे फाइट कर रहे हों चाहे जो भी ड्यूटी कर रहे हों, चाहे क्यों आर्मी में बहुत सारे अलग अलग हैं, कोई रेजिमेंट सिग्नल्स हैं जो कम्युनिकेशन देखते हैं, इंजीनियर्स हैं जैसे ब्रिज बनाना होता है उसका काम करते हैं, टैंक वाले हैं तोप चलाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के 10-15 किस्म के जो सप्लाई वाले लोग हैं वो खाना सप्लाई करते हैं, पेट्रोल सप्लाई करते हैं और सामान जैसे, तो अलग अलग प्रकार के रेजिमेंट्स हैं, अलग अलग प्रकार के रोल दिए हुए हैं। केवल डॉक्टर्स की ट्रेनिंग अलग होती है, आर्मी में डॉक्टर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग वहाँ नहीं होती, उनकी लखनऊ में होती है, अलग प्रकार की है।
ओके, तो सर कहते इसमें ट्रेनिंग हो गया, सब कुछ कंफर्म हो गया, तो इसमें जो सर्विस होती है वो कितनी ईयर्स की होती है?
सर्विस दो प्रकार की, एक तो है परमानेंट कमीशन जो कि मेरा था जैसे, तो उसमें 20 इयर्स का मिनिमम सर्विस करना है एज एन ऑफिसर, 20 इयर्स के पहले छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा। किसी भी हालत में मतलब आर्मी रिलीज नहीं करेगी, रिटायरमेंट नहीं दे
आपको
सकते,
एनी हाउ आपको 20 इयर्स सर्विस
कंप्लीट करना है। और जो शॉर्ट सर्विस है वो 5 साल बाद उनको ऑप्शन है कि छोड़ सकते हैं, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो अपना विलिंगनेस देंगे और आर्मी को अगर सूटेबल लगता है तो उनको वो आगे कंटिन्यू करने का 5 साल का और एक्सटेंशन दे सकते।
तो परमानेंट कमीशन में जाने के लिए क्या करना होता है सर, मतलब क्या प्रोसेस क्या है इसका?
ये ट्रेनिंग होती है जो जैसे हम जब उसका क्या है, परमानेंट कमीशन की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है और शॉर्ट सर्विस की चेन्नई में होती है, उसकी ट्रेनिंग अलग है, इंस्टीट्यूशन अलग है, उसका एंट्री अलग है, वो
ठीक है
जो आर्मी की एंट्री है वो अलग एंट्री है, तो वो जो एंट्री उनको पता है कि हमारी सर्विस 5 साल के लिए है, उसके बाद रिन्यू हो सकती है,
एक्सटेंड
कर सकते हैं जी। अभी क्या होता है आर्मी की एक और विशेष बात क्या है कि जो आर्मी में ऑफिसर्स की जो कहते हैं कमीशन ऑफिसर हैं, तो कमीशन ऑफिसर मींस उसको जो क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर हैं और इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने हाथ से साइन करके देते हैं इन इंक, इट इज नॉट ए स्टैम्प। जैसे हमारे टाइम में नीलम संजीव रेड्डी ही वॉज द प्रेसिडेंट, तो उन्होंने साइन करके एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसमें लिखा होता है, सो नेम लिखा होता है और उसमें सिग्नेचर होता है,
दैट इज कॉल्ड
इंडिविजुअल साइन कर, जितने भी हर बार 250-300 जितने भी ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं आर्मी के, इसी प्रकार नेवी के, इसी प्रकार एयरफोर्स के, तो सभी को, बिकॉज इट इज द प्रेसिडेंट्स कमीशन दे कॉल इट।
तो आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के थ्रू इन्हें अपॉइंट किया
जाता है, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया जी।
ओके सर, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स इसके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं?
एक्चुअली हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार जो तीनों सेना है आर्मी नेवी एयरफोर्स, इनका सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, राष्ट्रपति, तो जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कमांडर हैं तीनों के, इसीलिए जो भी ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट खुद साइन करते हैं अपने हाथ से।
तो इस सुप्रीम कमांडर से हम लोग ये कह सकते हैं कि फिर ये जरूरत पड़ने पे ये कमांड अपने हाथ में लेकर ऑर्डर्स दे सकते हैं?
एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो ऐसा ही है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, देखिए हमारे देश में राष्ट्रपति का रोल जो है ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे चूंकि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तो कोई भी अगर आदेश होना, कोई भी पॉलिसी है, कहाँ किस देश से युद्ध होना है, किस में युद्ध रोकना है होना, तो ये सारे डिसीशन प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का चूंकि ये एक रोल है, तो इसमें जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास सारे पावर हैं, जो प्रेसिडेंट चाहे वो पॉलिसी बनाएंगे, जो चाहे वो बोलेंगे, लेकिन इंडिया में क्या है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो प्रेसिडेंट का भले रोल है लेकिन हर एक ऑर्डर्स में प्रेसिडेंट का भले नाम होगा लेकिन जो है वो रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर की होगी।
सर आपने 20 इयर्स अपनी सर्विस दी आर्मी में, तो आर्मी की सबसे खास बात क्या लगती है जो इंडियन आर्मी की है, एंड अगर उसके कंपैरिजन में हम पाकिस्तानी अदर कंट्रीज की बात करें जो क्वालिटीज उनमें नहीं है इंडियन आर्मी में है?
इंडियन आर्मी में क्या है, ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग है उसमें ये सिखाया जाता है कि जो भी हम अपने जवानों को, सोल्जर्स को कोई ऑर्डर दें, कोई काम करने के लिए टास्क दें, तो वो काम हमें खुद करते बनना चाहिए, अगर हम वो नहीं कर सकते हैं तो हम उनको ऑर्डर नहीं देंगे, इसलिए जो भी काम होता है, जैसे आप बताया ना BPET फिजिकल प्रोफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी टेस्ट, वो जवान्स भी पास करते हैं, ऑफिसर्स भी पास करते हैं,
पहले आपको खुद उस
खुद सारे टेस्ट पास करना है, वो सारे फिजिकल टेस्ट खुद पास, और वो 45 ईयर्स तक पास करना है, 45 ईयर्स की एज तक, उसमें एज लिमिट है आर्मी में कि 45 ईयर्स की एज तक सारे टेस्ट आपको पास करना है, हर साल उसका टेस्ट होगा
हर एक ऑफिसर एवरी ईयर टेस्ट देना है
सर्विस में आने के बाद भी मैंने खुद किया 45 इयर्स की एज तक
ड्यूरिंग सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होता है
सर्विस के दौरान पूरे सर्विस में जैसे होता है वो 5 किलोमीटर दौड़ना है वो मंकी रोप क्रॉस करना है ये 9 फीट डिच क्रॉस करना है ये सारे सर्विस के दौरान भी हर साल करना
इजी हो गई होगी चीजें आपके
नहीं लेकिन इजी नहीं प्रैक्टिस करनी पड़ती है बाद में जो उसकी डेट आती है अनाउंस होता है भाई ये टेस्ट आपको इस दिन क्लियर करना है तो उसके कम से कम 15-20 दिन पहले से हम लोग सुबह दौड़ना शुरू कर देते हैं रोज तो जाते ही दौड़ने लेकिन वो ड्रेस में दौड़ना शुरू कर देते हैं पूरी राइफल के साथ पूरे पैक के साथ
मतलब ऐसा नहीं
एक मोमेंटम बन जाए
कमांडर आपको कमांड दे दे कि आपको यू हैव टू डू दिस और वो खुद नहीं कर
खुद नहीं खुद दूसरा इसके बाद क्या होता है अनलाइक जैसे तो हम लोग खुद जो ऑर्डर देंगे तो खुद करने बनना है दूसरा लीड फ्रॉम द फ्रंट लीड फ्रॉम द फ्रंट का मतलब है कि जब हमने किसी जवान को अपने सोल्जर्स को कमांड दिया ये काम करने का तो हमें आगे चलना है ऑफिसर्स हमेशा आगे चलेंगे यानी कि जवान को बोलते हैं आगे जाओ सोल्जर्स को आगे जाओ हम पीछे से आ रहे हैं ऐसा नहीं तो वे कहीं बैठे बैठे ऑर्डर दे दिया ऐसा नहीं तो सोल्जर्स को कॉन्फिडेंस आता है देखो हमारे जो लीडर हैं हमारे जो ऑफिसर हैं वो आगे चल रहे हैं वो अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं तो उनको भी कभी संकोच नहीं लगता भाई देखो साहब तो आगे जा रहे हैं
जैसे एज अ पेरेंट है वो अपने बच्चों से खुद को आगे रखते हैं वैसे आप कह सकते
तो वो एक फादरली फिगर कह लीजिए लीडरशिप है लीडरशिप खास वो है जबकि पाकिस्तान आर्मी बताते हैं ऐसा नहीं वहां पर ऑफिसर जो है वो सोल्जर्स को बोलते हैं आगे जाओ और वो उतना आगे जाने में विश्वास नहीं रखते
तो मतलब इस तरह का खुद से
इसलिए यहाँ पर जो हमेशा इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारे जवानों के मोराल बहुत अच्छा है बहुत ऊंचा रहता है उनका वो हमेशा किसी चीज को इसलिए लगन से करते हैं उनको पता है कि जो ऑफिसर्स हैं वो लीड कर रहे हैं
जी।
वो हमको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं वो इतने सक्षम है
बहुत अच्छी
इस तरह की कि उनका ध्यान रखना सबसे पहले उन्हें पता है कि हमारा कोई नुकसान होने के पहले ये हमारा ऑफिसर ध्यान रखेंगे।
एंड सर कभी कोई ऐसा वॉर की सिचुएशन हुई हूँ आपकी ड्यूटी के दौरान या कभी कोई पाकिस्तानी सोल्जर पकड़ा गया हो हिंदुस्तान में तो वो कैसा ट्रीटमेंट देते हैं फिर उस केस में?
एक्चुअली इसमें क्या होता है एक जिनेवा कन्वेंशन है जो इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर कोई भी युद्ध होता है ना तो किसी भी देश के सिपाही हैं ऑफिसर्स हैं उनको किसी न किसी कारण से इंडियन सोल्जर्स पाकिस्तान में चले जाते हैं ऑफिसर्स को भी कर लिया जाता है प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया जाता है कैप्चर कर लिया जाता है इसी तरह पाकिस्तान के भी सोल्जर्स को ऑफिसर्स को कैप्चर करके इंडियन आर्मी ले लेती तो जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार क्या है कि किसी भी कैप्चर्ड सोल्जर को परेशान नहीं करना है उसको वो दुश्मन नहीं हमारा अभी वो कैप्चर हो गया अभी उसको पूरा सम्मान दे के उसका ध्यान फायर नहीं करेगा तो वो ध्यान रखना है। तो जब पाकिस्तान से वॉर हुआ था तो हमारे फील्ड मार्शल मानेकशॉ उन्होंने इंश्योर किया ये कि जो भी पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह सुविधाजनक बैरिक्स में रखा जाए ऐसे नहीं खुले में कर दो ठंड में गर्म में कहीं भी उनको बेसिक सुविधा दी जाए खाने की पीने की जो भी है टाइम पे दिया जाए तो वहाँ के सोल्जर्स इतने ज़्यादा प्रभावित हुए इस बात से। एक बार फील्ड मार्शल मानेकशॉ पाकिस्तान विजिट में गए थे तो वहाँ का एक सोल्जर आया बहुत सलाम किया उन्होंने कहा साहब मुझे इतना गर्व है कि मैं आपके कंट्री में प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ा गया था और आप लोगों ने बहुत हमारी देखभाल की और मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ और काश मैं आपके सेना में होता तो बहुत भाग्यशाली होता
काश मैं आपकी सेना में होता वह क्या बात है। यही तो इंडियन आर्मी की खासियत है सर कि हर कोई अपनी अपनी कंट्री के लिए लड़ रहा है लेकिन जब आप हमारे पास आते हो तो हम आपको बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में रखते हैं एंड एक इंसानियत वाला व्यवहार करते हैं आपके साथ तो ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी ने ऐसा कहा हमारी कंट्री के लिए। तो और इसके कंपेरिजन में अगर मैं एक क्वेश्चन और सेम डालूँ कि अगर हमारे इंडियन सोल्जर अगर पाकिस्तान सेना के हाथ लग जाते तो उनका क्या बिहेवियर होता है?
हाँ, वो लोग तो बहुत टॉर्चर करते हैं परेशान करते हैं और कई बार तो मतलब उनको बहुत बुरी हालत में ट्रीटमेंट करते हैं
तो
बहुत
वो रूल्स को फॉलो नहीं करते
और हालांकि बहुत सारे अपने देखिए अभी कारगिल वॉर है या दूसरे भी वॉर में 71 वॉर में बहुत सारे सोल्जर्स तो मिसिंग हो गए मतलब वहां से उनकी बॉडी भी नहीं मिली और उनको क्या टॉर्चर किया क्या किया वो पता नहीं है। वहाँ पर मेरी एक्चुअली पहली पोस्टिंग थी जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर से आगे पाकिस्तान बॉर्डर पर
फर्स्ट पोस्टिंग फर्स्ट
आफ्टर ट्रेनिंग हाँ तो 1980 की बात है तो उस टाइम वो एक ब्रिगेड बोलते हैं फॉर्मेशन है तो वो एक वैली में थी वहाँ पर तीन तरफ पाकिस्तान है एक तरफ इंडिया है
मतलब वैली
तीन साइड से पहाड़ है वो पहाड़ उस तरफ उसके पाकिस्तान है एक साइड पहाड़ के इस तरफ इंडिया है और उसमें क्या रहता है कि साल में 5 महीने बर्फ गिरती वहाँ नवंबर से लेकर मार्च तक तो पूरे चारों तरफ पहाड़ों में बर्फ जमी रहती है और 5 महीने तक वहाँ पर कोई भी मूवमेंट कोई गाड़ी नहीं जा सकती है कोई सारे चीज़ एरोप्लेन से ड्रॉप करते हैं एयर ड्रॉप करते हैं चिट्ठियाँ भी चिट्ठियाँ भी जो कोई लिखता है चिट्ठी, तो वहाँ पर 10 दिन 15 दिन बाद चिट्ठियाँ मिलती हैं हम लोगों को, वो ड्रॉप कर देते हैं, एयर ड्रॉप कर देते हैं और सबकी चिट्ठी उनको पहुँचेगी 10 से 15 दिन बाद। खाने का सामान भी जो होता है वो सब पैक्ड होता है, जैसे अंडे का पाउडर होता है पैक्ड, पोटैटोज होते हैं, सब्जियाँ पैक्ड टिन्स में होती हैं, तो वो ड्रॉप कर देते। तो जो खाना बनता है मेस में वो सब इसी का बनेगा, टिंड सब्जी है, टिंड फ्रूट है, अंडे का पाउडर होता है तो उसको ड्राइड पाउडर रहता है, उसको ऑमलेट बनाते जो भी करते हैं। 5 महीने तक फ्रेश वेजिटेबल्स देखने को नहीं मिलती वहाँ पर। दूसरा, उससे भी बड़ी बात क्या है कि जो ये वहाँ से बाहर आना ही जाना पड़ता है किसी न किसी काम से, कोई छुट्टी जाएगा तो आना कैसे, पैदल आना है। उसमें एक पहाड़ी का जो बना होता है साधना पास बोलते हैं उसको, नास्ताचुन पास नाम है उसका, साधना पास नाम रखा गया। एक बार जो एक्ट्रेस साधना थी वो वहाँ पर गई थी सोल्जर्स का मोराल हाई करने के लिए, तो उसका नाम साधना पास रखा गया।
ओके, तो वहाँ पे उस टाइम कोई गाड़ी नहीं चलती आप
वहाँ
तो
पर, हाँ बर्फ होता है और बर्फ दिन में बर्फ पिघल जाती है, एवलांच हो जाता है, तो केवल रात को चलना है। उसका फुट कॉलम बोलते हैं उसको, फुट कॉलम का मतलब क्या है कि सारे लोग 25, 50, 100, 150 लोग, वो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे उस साइड में और शाम को 7 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा तब उस बर्फ़ के ऊपर चलना शुरू करेंगे। वो भी पहाड़ का स्लोप होता है, स्लोप के ऊपर चलना है, अगर कहीं पैर फिसल गया तो नीचे खाई में चले जाएंगे।
तो बिल्कुल अंधेरे में चलना,
बिल्कुल अंधेरे में,
तो कुछ तो टेक्निक हाँ, यूज करते,
थोड़ा सनलाइट मतलब मून लाइट कह लो, मून लाइट जो होती है तारों की रोशनी जब भी होती है जिस टाइम में, वो उसके अलावा क्या करते हैं वो लोग, वहाँ पर बीच में डंडे गाड़ देते हैं बर्फ के बीच में और रस्से बांध देते हैं, तो उनका सहारा लेकर के लोग चल सकते हैं कि नींद ना आ जाए, कोई नीचे गिर ना जाए। इसके अलावा थोड़ा सा प्लेन एरिया होता है वहाँ पर चाय बनाई जाती है, तो हर एक 2-3 घंटे पैदल चलने के बाद वो चाय का बनाकर सबको दी जाती है कि चाय पी लो, 10 मिनट रेस्ट कर लो, फिर आगे चले जाओ, क्योंकि शाम को 7 बजे चलते हैं और सुबह 6-7 बजे इस पार आते हैं क्रॉस करके।
अटैक होने का पूरा रात बहुत रहता होगा ना सर
वहाँ पर, रात में अटैक का तो वो तो चारों तरफ बॉर्डर सिक्योर्ड है, गार्ड कर रहे हैं, फिसलने का ज्यादा डर है और क्लाइमेट इतना है कि हम लोग पूरा मतलब कवर्ड रहते, स्नो क्लोथिंग पहनना पड़ती, जो बूट नॉर्मल बूट नहीं पहन सकते वहाँ, वहाँ पर स्नो बूट्स होते हैं, स्नो बूट मतलब वाइट कलर के होते हैं, इंसुलेटेड डबल वो होता है उसमें, तो उसमें वाइट कलर का बूट जो रबर का होता है कि उसमें पैरों में पसीना आ जाता, बर्फ में चलते हुए पसीना आ जाएगा, अगर नॉर्मल बूट पहनेंगे तो उसमें फ्रॉस्टबाइट हो जाएगा, मतलब उंगली काटनी पड़ेगी, फिर इतनी ज़्यादा ठंड होती है पूरे बर्फ में। तो क्लोथिंग मतलब ग्लव्स होता है, कान का प्रोटेक्शन, पूरे बॉडी का कोट होता है पहनने का, तो उसमें पूरे शरीर को इतना प्रोटेक्शन रखना पड़ता है।
तो मतलब एक आर्मी, एक सोल्जर की लाइफ मैं कहूँ तो पूरी लाइफ वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने लाइफ का एक एक मिनट बहुत ही सर्वाइव करते हैं सर। एंड आपने जैसे कहा रात में चलते हैं, तो डे में मतलब क्यों नहीं चलते थे, अटैक
डे में नहीं, बर्फ बर्फ फिसल जाते हैं, बर्फ पिघलती है, अगर धूप पड़ेगी ना तो बर्फ पिघल जाएगी, पूरा एवलांच हो जाएगा, तो बर्फ के बहुत बड़े बड़े सिल्ले आ जाएंगे, तो कोई टकरा जाएगा,
डिफिकल्ट हो जाता,
इसलिए तो वो रात में ही जाते हैं, रात में बर्फ पिघलती नहीं है क्योंकि।
तो सर अभी अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस टाइम में जब आप लोग सर्विस दे रहे थे और आज के टाइम में क्या आपको चेंजेस दिखते हैं?
देखिए टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल बैरियर्स हैं वो तो वैसे ही रहते हैं,
वो तो
उसके लिए कुछ नहीं कर सकते कि ड्रोन से उठा के लाएंगे इस तरफ वो तो, इसलिए फिजिकल फिटनेस ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, फिजिकल फिटनेस का महत्व कभी कम नहीं हो सकता है,
वो आपके
हमेशा रहेगा। हाँ, अभी भी जो ट्रेनिंग होती है मिलिट्री एकेडमी में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, वो इवन लेवल्स ऑफ टफनेस हमेशा सेम रहते हैं, और ये तो बेसिक ट्रेनिंग है, इसके बाद कमांडो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग होती है, वो इससे भी कहीं कठिन होती है।
okay, अब नॉर्मल सिविलियन की बात करें, अगर मैं खुद की भी बात करूँ तो थोड़ा सा अगर डे हैक्टिक हो जाए तो सर में दर्द हो जाता, आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेस्ट करना क्योंकि आज बहुत थक गए हैं, लेकिन आर्मी वाले के लाइफ में तो ये एकदम रोज की ही बात हो जाती है सर।
जी, उसमें देखिए मैं एक बात ऑब्जर्व की, जो थकनेस होती है इट्स इन द माइंड, अगर हम शाम को सोचें कि अरे आज मेरा बहुत हेक्टिक डे रहा, आज ऐसा रहा तो आराम कर लूँ, तो एकदम माइंड में बॉडी में थकान आ जाएगी,
माइंड तुरंत
सिग्नल
दे देगा।
अगर हमें पता है कि नहीं मुझे अभी ये करना है, रात को 10 बजे ये करना है, 11 बजे ये करना है, फिर सो सकते हैं उसके पहले नहीं, तो आपका उस ऑब्जेक्टिव में ध्यान है तो आपका ध्यान थकान की ओर नहीं जाएगा कभी भी,
क्योंकि माइंड तुरंत कमांड देता है बॉडी को कि अब ये करना है, थकना है तुम्हें।
जी
राइट। सर आपके मतलब सर्विस के दौरान सबसे इमोशनल पार्ट क्या रहा है सर?
देखिए हम लोग जब आर्मी में सर्विस करते हैं, हमारे जो सोल्जर्स रहते हैं इन लोगों के लिए हम लोग लगता है कि इन लोगों की फैमिलीज़, कोई जवान है उनके बच्चे पीछे हैं, घर में हैं, गांव में हैं, कहीं पर हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पर। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि उनको उनकी फैमिली से बात करा दी जाए। उस टाइम मोबाइल नहीं होता था, कोई टेलीफोन नहीं होता था, तो आर्मी का एक अलग प्रकार का सिग्नल फोन होता है, तो उससे जो भी जहाँ भी उनकी फैमिलीज हैं वहाँ पर उनको नियर बाई स्टेशन, जो भी नियर बाई मिलिट्री स्टेशन है कह लो, तो मिलिट्री स्टेशन में वहाँ पर हम लोगों ने अरेंजमेंट कर दिया था कि एक टेलीफोन अवेलेबल रहेगा, तो हफ्ते में एक बार वो व्यक्ति अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से बात कर सके
जी।
तो उनके डेज फिक्स कर दिए जाते हैं कि ठीक है, आप इतनी ज़्यादा चिट्ठी पत्री नहीं आ सकती इतनी जल्दी, मोबाइल का सवाल ही नहीं वहाँ, और कोई साधन नहीं था, तो उनको कम से कम ये तसल्ली रहे कि हमारे घर में सब लोग ठीक तरह से हैं
जी।
तो उनको उनकी खबर मिल जाए तो उनको एक निश्चिंत हो जाते हैं
जी।
ये रहता है।
तो उस टाइम में काफ़ी फैमिली को लेके सबको फैमिलीज की याद भी आती होगी।
हाँ
एंड सर, सेना में मतलब सारे धर्म के लोग अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो वहाँ पर धर्म निरपेक्षता कैसी रखी जाती है?
देखिए, आर्मी में सबसे बड़ी बात क्या है, सब इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कोई रिजर्वेशन नहीं, पहली बात तो किसी का भी
जी।
सभी धर्मों के लोग हैं, और यहाँ पर क्या है, जैसे रेजिमेंटल सेंटर्स होते हैं जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, जो बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, तो वहाँ पर एक मंदिर भी होगा, मस्जिद भी होगा, गुरुद्वारा भी होगा, चर्च भी होगा,
सारे धर्मों सब चीज़ का आदर किया जाएगा।
और सबका, और जैसे हम लोग दिवाली मनाएंगे वहाँ ईद भी मनाएंगे, तो हम लोग एज एन ऑफिसर मस्जिद में भी गए, हम लोग मस्जिद में भी उनकी वो अटेंड करते हैं जो नमाज होती है, गुरुद्वारे में भी जब उनका लंगर होता है, जो गुरु गोविंद साहब का बर्थडे होता है, तो हर धर्म के लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हैं, तो इस तरह जैसे इवन आर्मी में रेजिमेंट्स जो होती हैं, सिख रेजिमेंट है ऐसे, तो उसमें सारे सरदार हैं मुस्लिम, उनके लिए जो ऑफिसर्स हैं वो सरदार नहीं है, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, मद्रासी भी हो सकते हैं, नॉर्थ इंडियन भी हो सकते हैं, लेकिन उनको ये है कि उनकी भाषा बोलना जरूरी है, पंजाबी भाषा बोलना जरूरी है, कोई राजस्थान रेजिमेंट है तो उनको राजस्थान की भाषा बोलना जरूरी है, उनके जो कल्चर हैं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, जो धर्म को फॉलो करते हैं वो मालूम होना चाहिए। दूसरी, आर्मी में हर धर्म के धर्मगुरु होते हैं, उनकी पोस्ट होती है, जैसे पंडित जी हैं, तो पंडित जी रिक्रूटमेंट होता है पंडित का, आर्मी में पोस्ट निकलती है, वो JCO लेवल के होते हैं, जैसे नायब सूबेदार सूबेदार होते हैं, तो उनकी अलग से पोस्ट निकलती है, उसकी उनकी एक महीने की ट्रेनिंग होती है उनको, लेकिन जैसे मौलवी का रिक्रूटमेंट होगा,
ट्रेनिंग पंडित जी की ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता
है? उनको सिखाते हैं, तो नॉर्मल ओरिएंटेशन एक प्रकार।
तो पंडित जी की ट्रेनिंग की बात करो तो उन्हें क्या सिखाया जाता है?
हाँ, तो आर्मी में क्या होता है कि पंडित का भी रिक्रूटमेंट होता है
जी,
मौलवी का रिक्रूटमेंट होता है, ग्रंथी का रिक्रूटमेंट होता है, उनके लिए क्या है कि उनको एक महीने की शॉर्ट ट्रेनिंग, लाइक ओरिएंटेशन, उनको मतलब बंदूक लेकर वो नहीं चलाना है, लेकिन उनको रहना फ्रंट पे है, और उनको बताया जाता है कि सभी धर्म के त्योहार है, पूजा है, बेसिकली कैसे कराया जाए, तो हर धर्म के लोगों को ये पता है कि जो भी हमारा धर्म है, जो हमारा त्योहार है, चाहे हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, वो हम आराम से वहाँ मना सकते हैं पूरे फ्रीडम के साथ, और किसी को कोई इसमें कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता कि हिंदू मुस्लिम के लिए ऐसा बोल रहा, मुस्लिम सिख के लिए कुछ बोल रहा, कभी ऐसे आप देखो कोई बहस चलती रहती है हिंदू मुस्लिम, तो वहाँ पर ऐसा सब मिलजुल के काम करते हैं, और सभी के आपस में बहुत प्रेम भाव की भावना होती है।
सर, आर्मी की कितनी खूबसूरत बात है कि सब मिलके भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन समाज के कुछ ठेकेदारों ने ये मतलब ठेका ले रखा है हिंदू मुस्लिम के बीच में
डिवाइड
कराने का, डिवाइड कराने का। सर, तो हमें सीखना चाहिए कि हम सारे इंडियंस हैं, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन जैसे मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने मतलब मेल जोल से इंडियन आर्मी में लोग रहते हैं
जी।
बहुत खूबसूरत बात है सर ये। एंड सर, सेना में महिलाओं का क्या स्थान है?
हाँ, महिलाओं का दूर पर, तो आजकल महिलाओं की एंट्री हो गई है, जैसे NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी है, वहाँ भी महिलाओं को एंट्री मिल रही है, वो भी ट्रेनिंग करके वो भी ऑफिसर बन रही
है। कोई रिजर्वेशन है सर उनका?
रिजर्वेशन टाइप का नहीं है, वैसे अलग उनकी सीट्स होती कह लो कि ये सीट्स लेडीज के लिए हैं, ऐसी इंडियन मिलिट्री एकेडमी वहाँ पर भी लेडीज ट्रेनिंग करती हैं, वो भी ऑफिसर बनती हैं, और हर प्रकार के वो कमांड लेवल तक भी पहुँचती हैं। दूसरा है जो ऑफिसर वाइव्स होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं वाइफ्स, दे आर नॉट इन द आर्मी, बट उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, कोई भी जूनियर कैप्टन की वाइफ भी होगी तो ब्रिगेडियर या जनरल होगा वो भी उनको सैल्यूट करेंगे, विश करेंगे, सम्मान देंगे, हमेशा रिस्पेक्ट देंगे। पहले बैठने को, जो ऑफिसर मेस में कोई फंक्शन होता है तो लेडीज़ आएंगी, लेडीज़ को पहले खाना सर्व किया जाएगा, उसके बाद जेंट्स खाना लेंगे, तो उनको हर बात में बहुत सम्मान,
जूनियर कोई भी रैंक है कि कोई वो फीमेल है तो आप पहले उसकी रेस्पेक्ट,
उसको सम्मान देंगे, उसको बैठने को बोलेंगे, कभी कार में दरवाजा खोलना है तो हमेशा ऑफिसर उसको दरवाजा खोल के और रिस्पेक्ट के तौर पे उसको देंगे।
कितनी खूबसूरत बात है सर। नॉर्मली मतलब फीमेल्स की रेस्पेक्ट करना भी इंडियन आर्मी में सिखाया जाता है, ओके एंड सर, अभी कोई जैसे कि कोई आज का यूथ जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहे, तो मैं चाहती हूँ क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है आज के टाइम में, लोगों को जानकारी है, आपने 20 ईयर्स सर्विस दी है, तो मैं चाहती हूँ आप बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी डिटेल्स बताएं।
देखिए आर्मी में क्या होता है, कई प्रकार के, पहली बात सबसे बेसिक एंट्री है 10+2 के बाद, जिन भी बच्चों ने 10+2 एग्जाम दिया है, पहली बात उनको सोचना चाहिए आर्मी में जाने के लिए एग्जाम होता है यूपीएससी का। यूपीएससी रिटन एग्जाम कंडक्ट करती है, उसमें इंग्लिश, मैथ, साइंस, जनरल नॉलेज, इसके पेपर्स होते हैं। वो एग्जाम जब पास कर लेते हैं जो बच्चे, उनको फिर ये एसएसबी के लिए बुलाया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसमें 5 दिन का इंटरव्यू होता है, उसमें उनको इंटरव्यू जो क्लियर करते हैं फिर उसका मेडिकल होता है, मेडिकल में जो क्लियर करते हैं उनको फिर वहाँ पर मेरिट लिस्ट के अनुसार बुलाया जाता है। दूसरा है कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज, CDS बोलते हैं इसको, ये है एंट्री ग्रेजुएशन के बाद, कोई भी BA, BCom, BSc कुछ भी किया हो उनके लिए एग्जाम होता है,
ऑफिसर ग्रेड में,
ऑफिसर ग्रेड, आई एम टॉकिंग ऑफिसर्स ओनली, हाँ, तो वो एग्जाम देना पड़ता है, वो भी UPSC कंडक्ट करती है। उस एग्जाम के बाद सेम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा, और उनकी ट्रेनिंग जो है 1.5 साल की होती है,
ट्रेनिंग 1.5 साल,
1.5 साल IMA में। और जो ये NDS जाते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उनकी नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला है पुणे, तो पुणे में उनकी ट्रेनिंग 3 साल होती है, इन 3 साल के दौरान उन बच्चों को ग्रेजुएशन कराया जाता है, जैसे BA, BCom, BS इक्विवेलेंट, तो ग्रेजुएशन करने फिर वो IMA में आते हैं, इंडियन मिलिट्री
एकेडमी,
एकेडमिक चलते साइड में, मोर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एंड एकेडमिक दोनों का बैलेंस है। उसके बाद जिनको आर्मी में जाना है तो वो यहाँ पर आएंगे देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो एयरफोर्स कैडेट्स हैं वो एयरफोर्स एकेडमी में जाएंगे, जो नेवी वाले हैं वो नेवी में जाएंगे, ये वाली टाई NDA की टाई है, दिस टाई इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें एम्बलम बना हुआ है, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों, व्हेन आई वाज पोस्टेड इन NDA एज एन इंस्ट्रक्टर, ये टाई वहाँ ऑफिसर्स को, इंस्ट्रक्टर्स को पहननी पड़ती है।
बेसिकली सर, अगर कोई 12th करके आर्मी ज्वाइन करता है तो उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख के वो ऑफिसर ग्रेड में जा सकता है, प्रमोट कर सकता है,
उसको एक्चुअली पढ़ाई नहीं करनी, उसको एक बार NDA में जिनका सिलेक्शन हो गया उनके पेरेंट्स को, उन बच्चों को कुछ नहीं सोचना, उनको सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, फिर उनको वहाँ पढ़ाया भी जाएगा, ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, सब कुछ वहाँ ट्रेनिंग के दौरान, अलग से कुछ नहीं करना है उसको, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, उसी के ट्रेनिंग के दौरान ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसके बाद कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाती है, और ट्रेनिंग के बाद 21 साल की उम्र में वो कमीशन ऑफिसर बन जाए, क्लास वन गेस्ट ऑफिसर, बस एक बार वो क्लियर कर दिया, एग्जाम क्लियर कर दिया, तो उसमें फिर उनकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट।
मोस्टली लोगों को लगता है जिनकी हाइट बहुत अच्छी है, जो ज्यादा खेल कूद करते हैं, तो उन लोगों का सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं।
देखिए ऐसे लोगों का भ्रम है, एक्चुअली आर्मी में या नेवी, एयरफोर्स किस में भी, कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा हाइट होनी चाहिए, नॉर्मल हाइट वाले व्यक्ति भी बहुत अच्छे सिलेक्ट हो जाते हैं।
मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए सर
उसमें? मिनिमम हाइट तो कुछ 5 फीट 4 इंचेस कुछ रहती है।
अच्छा,
तो इतनी होना चाहिए, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा गेम्स में या किसी में पार्ट लिया हो, अगर लिया हो तो पॉइंट मिलते हैं, बोनस पॉइंट मिलते हैं, NCC के पॉइंट मिलते हैं, गेम्स के पॉइंट मिलते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिन्होंने गेम नहीं खेला है अगर, तो उनको सिलेक्शन नहीं लिया होगा। बहुत से बच्चे देखो आर्मी में जाते हैं, वो अपने गेम से करियर बना लेते हैं, नीरज चोपड़ा अभी देखो ओलंपिक मेडल जीत के आए, तो आर्मी का बैकग्राउंड उनका, उन्होंने आर्मी में पूरी ट्रेनिंग के दौरान उनको ये मौका मिला एक से एक अच्छी गेम को अपना इम्प्रूव करने का, एक से एक स्पेशलाइज कोचिंग लेने का, तो इस तरह के मौके बहुत होते हैं जो आर्मी ज्वाइन करते हैं उनको। अगर स्पोर्ट्स का शौक है, एडवेंचर का शौक है, तो माउंटेनियरिंग कर सकते हैं, कोई भी गेम में पार्ट लेकर ओलंपिक तक जा सकते हैं।
राइट सर, वो उसके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है,
प्लस पॉइंट जी।
एंड सर, अब आते हैं आपकी तो आर्मी के जर्नी के बाद, आर्मी से रिटायरमेंट के बाद आपने क्या क्या किया सर?
एक्चुअली मैंने आर्मी से 20 ईयर्स सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट ले लिया 2000 में,
क्योंकि कहते हैं ना कि आर्मी वाले कभी भी खाली नहीं बैठते
जी। उसके बाद मैंने फिर अपना आपको,
तो सर जो SSB में जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें उनके माइंड में होती है, लोगों को नर्वसनेस होती है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो कई बार बनावटी चीजें भी वो बोल देते हैं, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनसे कोई गलती ना हो, क्या एक्सपेक्टेशंस होती है जो इंटरव्यू लेता है?
जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे से बात करते हैं तो ये पूछते हैं, तो उसमें बेसिक बात क्या है कि सबसे पहले कि ओरिजिनल सेल्फ के तौर पे आदमी को जाना चाहिए, जो इंडिविजुअल है, कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए उनको अपना अपियरेंस का ध्यान रखना, जैसे हेयर कट है तो प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए, प्रॉपर आर्मी शेविंग करना आर्मी में बहुत जरूरी है। एक बार बताऊंगा, आर्मी में एवरी सिंगल डे वी हैव टू डू शेविंग, ये रूल है, एवरी सिंगल डे, एवरी डे इन द मॉर्निंग, ये कंपल्सरी है, ट्रेनिंग के दौरान से लेकर के और लास्ट रिटायरमेंट तक एक भी दिन कोई भी ऑफिसर या पर्सन कैन नॉट बी विदाउट शेविंग। दूसरा, आपको वहाँ जाना है SSB के लिए जाते हैं तो आपकी ड्रेस ठीक होना चाहिए, फिटिंग होना चाहिए, क्लीन ड्रेस हो, बहुत महंगी, शूज़ ठीक होने चाहिए, शूज़ पॉलिश्ड होना चाहिए, ये अपियरेंस है। दूसरा, वहाँ जब जाते हैं तो इंटरव्यू में किसी भी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। जैसे किसी को कोई चीज़ पूछा, जैसे कैंडिडेट था वो स्कूल में थोड़ा बहुत फुटबॉल खेलता था, अब जब वो जाने लगा इंटरव्यू के लिए तो उसके दोस्तों ने बोल दिया कि तू बोल देना है वो कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम, तो बड़ा अच्छा सर इफेक्ट होगा, तेरे को बहुत पॉइंट मिल जाएंगे। तो उसने बोल दिया बस कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम। अब जब कैप्टन बोलेंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे और डिटेल में, भाई ऐसे कैप्टन क्या क्या किया आपने। फिर वो अड़वा गया बीच में कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, मुझे लगा था कि मैं कैप्टन बनने वाला था लेकिन बना नहीं। तो अगर झूठ बोलेंगे तो पकड़ लेते हैं। जो SSB का टेस्टिंग पैटर्न है, वो टेस्टिंग पैटर्न ऐसा बनाया हुआ है कि जो भी व्यक्ति सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ये वो मालूम कर लेते हैं एक किसी तरह क्वेश्चन से। दूसरा, ब्लफ नहीं करना चाहिए कभी। कई बार ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, लोग कहते अरे कुछ नहीं होता बता देंगे, हम तो ब्लफ कर देंगे, कुछ भी बोल देंगे। तो अगर कुछ भी बोलेंगे तो उसमें और अपने उसमें फंस जाते हैं लोग फिर, और वो एक्सपोज हो जाते हैं, और एक बार एक्सपोज हो जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होता उनका। तो बेटर है बोलना कि मुझे नहीं पता, सॉरी आई डोंट नो,
आप सच
दे विल एक्सेप्ट दिस आंसर, सॉरी आई डोंट नो। Everyone not supposed to be encyclopedic, सब चीज़ें पता हूँ, वो तक कुछ चीज़ नहीं पता है, परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन अगर झूठ बोलना, बना के बोलना, ये अच्छी बात नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो। दूसरा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको पूरी तरह सुन लें पहले। कई बार क्या होता है, बच्चे ट्यूटर्ड होते हैं, कोचिंग में सिखाते हैं ये पूछे ये बोलना, उन्होंने एक वर्ड दो वर्ड सुने वो आंसर देने शुरू कर दिया, जबकि वो पूछ कुछ और रहे थे, ये नहीं पूछ रहे थे। तो इसलिए ध्यान से पूरा शांतिपूर्वक क्वेश्चन सुने, खत्म करने दो, उसके बाद फिर आंसर दें
जी।
ये जी। और दूसरा, जो भी आंसर होते हैं, कभी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो बच्चों को सिखाते ये पूछें तो ये बोलना, ये पूछें तो ये बोलना, ऐसा हो तो ये बोलना, तो ट्यूटेड क्वेश्चन वहाँ पकड़ में आ जाते हैं। वहाँ का टेस्टिंग पैटर्न ऐसा बना हुआ है कि जिसमें जो चीज़ सच में है, जैसे कोई पर्सन गेम नहीं खेलता है तो बोल नहीं, अगर हम झूठ बोल दिया मैं खेलता हूँ, मैं तो क्लाइंबिंग करता हूँ, मैं तो माउंटेनियरिंग करता हूँ, तो उसमें क्या है पकड़ में आ जाता है। सबसे पहले सच बोलना, क्रॉस क्वेश्चन, हाँ, तो सारा बायोडाटा लेते हैं, उसके बाद जो भी टेस्ट होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है कि आपको मैं नहीं बोलना है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि टीम वर्क है। आर्मी में देखा जाता है कि हमेशा टीम वर्क के तौर पे कोई भी एक्शन होगा, ऑपरेशन होगा, पूरी टीम काम कर रही है, उसका क्रेडिट पूरी टीम को मिलेगा। कोई भी एक व्यक्ति बोले मैं क्रेडिट ले रहा हूँ, हाँ, तो मैं, अगर कोई व्यक्ति बोले मैं कर रहा हूँ काम, मैं ऐसा करूँगा, तो उसको पसंद नहीं किया जाता। दूसरा, आर्गुमेंटेटिव नहीं होनी चाहिए। ग्रुप में आपको कोई बात है, वहाँ ग्रुप डिस्कशन भी होता है, वहाँ लेक्चरेट भी होता है, तो देखा जाता है कि जो व्यक्ति ग्रुप डिस्कशन में बोल रहा है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सबके ऊपर वो हावी तो नहीं हो रहा कि वो दूसरे को बोलने नहीं दे रहा, दूसरे के ऊपर एकदम अपना व्यू इम्पोज कर रहा है, दूसरे की बात सुनना भी है, अपनी बात कहना भी है,
कितना शांति और शालीनता से वो आंसर कर रहा है, सुन रहा है,
बैलेंस तरीके से सुनना है। और जो भी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं वहाँ, जैसे जो भी इंटरव्यू पूछा है, कोई भी टास्क दिया जाता है, तो वो टास्क कई बार ग्रुप टास्क होता है, इंडिविजुअल टास्क होता है, तो उसमें देखना है कि जो काम आपको दिया गया वो कैसे आप लॉजिकल सोच के कर रहे हैं उस काम को शांतिपूर्वक।
कुछ लोग ये शायद ये गलती कर देते होंगे कि मुझे दिखाना है कि मुझे आता है, उस चक्कर में वो ज्यादा कर जाते होंगे कोई चीजें, हाँ, जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती, हाँ, होगी,
कि दूसरे को नहीं आता मुझे आता, केवल दूसरे को नहीं आता मुझे आता है, कि बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हैं मन में।
जी जी।
तो ये नहीं होना चाहिए, सिंपल तरीके से होना चाहिए, जो बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो एक्चुअली है वही दिखाएं,
नेचुरल तरीके से खुद को प्रेजेंट करना चाहिए। बहुत मतलब ये इम्पॉर्टेंट बात आपने बताई, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट दिखना चाहूँ, उस चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट कई बार हो जाते हैं मे बी। ओके सर, एंड सर आपने जब ज्वाइन किया था आर्मी उस टाइम आपका डेजिग्नेशन क्या था और रिटायरमेंट के टाइम में क्या था?
अभी क्या जब हमने ज्वाइन किया था तो उस टाइम सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता था
जी,
आफ्टर कमीशन। आजकल तो खत्म हो गया, लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है आजकल, सेकंड लेफ्टिनेंट इज 1 स्टार और लेफ्टिनेंट इज 2 स्टार। तो आजकल जो रिसेंटली ये हो गया कि लेफ्टिनेंट तौर पे स्टार्ट होता है, और जब मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया तो लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक था मेरा उस टाइम 20 ईयर्स सर्विस करने के बाद, तो काफ़ी टाइम हो गया, 25 साल हो गए
जी जी
वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए हुए।
एंड सर कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो?
एक्चुअली हम लोग यहाँ पर मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल में एज ए हेड मास्टर, सैनिक स्कूल आपको पता होगा ये पब्लिक स्कूल्स होते हैं, तो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पर। तो वहाँ पर जो बच्चे आते हैं क्लास 6 से ले क्लास 12 तक के स्कूल होते हैं
जी,
तो वहाँ पर पब्लिक स्कूल की सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो वहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो जैसे पंजाब में पोस्टिंग थी मेरी कपूरथला, तो वहाँ पर सब पंजाब स्टेट के मोस्टली बच्चे आते हैं। तो उन बच्चों को जो हम लोग देखते हैं वो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन उनके हॉस्टल में रहने के मतलब उनके पेरेंट्स को महीने में एक बार अलाउड होता है कि एक बार महीने में आके बच्चों से मिल सकते हैं। तो वो जो पेरेंट्स आते थे, उनके मदर्स आते थे, फादर आते थे, तो वो लोग जब बच्चों से मिलते थे तो बच्चे शुरू में बहुत ज़्यादा मतलब अटैच रहते हैं। तो हम लोग हॉस्टल में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट्स होते हैं जो बच्चों को टेक केयर करते हैं। 6th क्लास के बच्चे होते, इतने छोटे बच्चे होते हैं, उनके बाद उनको पजामे का नाड़ा बांधना नहीं आता, इतने छोटे बच्चे होते हैं। तो उनको हम लोग जाके विजिट करते हैं, देखते हैं। पूरा स्टाफ है हमारे पास वहाँ स्कूल में, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट्स हैं, मेट्रन्स हैं, मेट्रन्स हैं, लेडीज स्टाफ होती हैं, और तो उनको टीचर्स होते हैं। तो उनको हैंडल करना बच्चों को बहुत ही कितना इमोशनल सीन रहता है कि उन बच्चों को उस तरह से एक एक दो दो महीने वो तो बहुत मतलब आप पेरेंट्स से अटैच होते हैं, आप समझते हैं। और जब वही बच्चे पास आउट होकर 12th क्लास से पास आउट होकर जाते हैं, जब वो टोटली डिफरेंट बच्चे हो जाते हैं, उस टाइम वो कहते हैं हमें घर नहीं जाने का मन कर रहा, हमारे दोस्त इतने अच्छे हो गए, हमारे टीचर इतने अच्छे यहाँ पर हैं, हमको इन्हें जाने का मन नहीं करता, अब हमारा इतना अटैचमेंट के साथ हो गया है।
डिटैचमेंट हो गया फैमिली
के साथ। वो स्कूल सैनिक स्कूल ऐसे होते हैं कि जहाँ पर बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई कराते हैं, वहाँ पर सारे गेम्स हैं, स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है, NCC है, सब आउटडोर गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं, चेस है, और लाइब्रेरी है, पढ़ने की चीज़ें हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चों का होता है। जब बच्चे वहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं तो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाते हैं
जी।
और उनको लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम देते हैं, अच्छी अच्छी जॉब में जाते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं।
तो बेसिकली आर्मी के लिए मतलब ये
हर स्टेट में एक्चुअली सैनिक स्कूल हर एक स्टेट में बना हुआ है
जी।
एवरी स्टेट हैज गॉट ए स्कूल, तो उस स्टेट के बच्चों को वहाँ पर दी जाती ट्रेनिंग। और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही कम फीस है इसकी, गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया है
जी।
इसका पर्पज़ यही कि दे आर फीडर इंस्टीट्यूशंस टू NDA, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी बना है जहाँ पर ट्रेनिंग खड़कवास ने, तो ये स्कूल इसलिए बनाए गए हैं कि यहाँ से बच्चे जो पास आउट तैयार होंगे 12th क्लास, CBSE एफिलेटेड है, तो CBSE इनको 12th क्लास से एग्जाम होता है, उसके बाद ये जा कर के वहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग करें। तो उनको ये कंपलसरी होता है कि एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होना है, भले वो सिलेक्ट कुछ बच्चे होते हैं उनके पेरेंट बोले तुम्हें आर्मी में नहीं भेजना, हमें डिफेंस में नहीं भेजना है, तो
आजकल के
अपियर होने जरूरी है।
आजकल के टाइम में सर बच्चे थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में कम रहते हैं या थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन उनके लाइफ में ज्यादा बढ़ गया है, तो फिर ऐसे में बच्चों को आर्मी के लिए मतलब प्रोत्साहित करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्या?
एक्चुअली देखो लोगों को समझना चाहिए कि आर्मी का जो है इट्स नॉट ए जॉब, इट्स ए करियर, इट्स ए प्रोफेशन। एंड सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको देश के लिए काम करने का मौका मिलता है, एक पहचान मिलती है। आर्मी में सर्विस करने से मुझे लगा अपने जीवन में जो भी एक समाज में पहचान मिली, एक विश्वास बनता है, एक रिस्पेक्ट होता है कि आर्मी में सर्विस की। इवन कोई भी अभी कोई बात करता है अग्निवीर की, तो अग्निवीर जैसे 4 साल भी जॉब करके उसके बाद अगर छोड़ भी देते हैं तो एक बाहर जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो ये सोचते हैं देखो इन्होंने इतने 4 साल डिसिप्लिन में काम किया है, इनको एक अच्छे तरीके से काम करने की आदत है, इनको टाइम पे आने की आदत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको जल्दी ले लेते हैं
जी।
तो समाज में एक समाज में एक पहचान बनती है कि आर्मी में काम करने से। उसके अलावा बाकी जो आज का युवा वर्ग को मैं कहना चाहूँगा कि जो भी ये आर्मी में आप देख, जिसको अगर गेम्स का शौक है, एडवेंचर का शौक है, घूमने का शौक है, तो सारी चीज़ आर्मी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट करा रही है, आपको जगह जगह देखने का मौका मिलता है। पोस्टिंग्स में आपको पंजाब में, आपको राजस्थान में, आपको JNK में जाने का मौका मिलेगा, हर जगह वहाँ का कल्चर देख सकते हैं, वहाँ के लोगों को देख सकते हैं, वहाँ का कैसे लोगों से काम कर रहे हैं वो जान सकते हैं
जी।
दूसरे इसको स्पोर्ट्स गेम्स का शौक है तो वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स की कोचिंग लेकर सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच सकते हैं,
सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है।
इसके अलावा आर्मी में मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल पूरा आर्मी के हॉस्पिटल्स होते हैं हर जगह, तो पूरे किसी को भी सब प्रकार के स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं थ्रू आउट सर्विस आर्मी के लिए, चाहे ऑफिसर हो चाहे लोअर रैंक के हो, उनकी फैमिलीज को भी सारा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ड्यूरिंग सर्विस, और आर्मी से रिटायरमेंट के बाद भी हम लोगों को फैसिलिटी मिलती है। अभी भी हम लोगों का कार्ड होता है ECSH कार्ड, उसको लेकर के हम लोग किसी भी हॉस्पिटल में जो इम्पैनल हॉस्पिटल है मतलब उसमें जाकर के ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जैसे CGHS होता है, हाँ CGHS के प्रकार से होता है वो है, प्लस राशन मिलता है आर्मी में, अपार्ट फ्रॉम सैलरी अभी सैलरी बहुत अच्छी है और अभी जो सेकंड जो लेफ्टिनेंट होते हैं उनकी 56,000 बेसिक सैलरी है आज की तारीख में, प्लस पर्क्स अलाउंसेस जो डिफरेंट सब प्रकार के फैसिलिटीज हैं, जो ट्रैवल अलाउंसेस हैं, हाउस रेंट का है, बहुत सारे अलाउंसेस हैं, तो वो मिला करके बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी है आज की तारीख में। तो आज के नौजवानों को सोचना चाहिए कि अगर करियर वाइज देखना है, पैकेज वाइज भी बहुत अच्छा है, लेवल 10 जो होता है पे बैंड का, उसमें लेवल 10 से स्टार्ट होता है, तो बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं आर्मी में
जी। एंड सर, जैसे आपने बताया कि रिटायरमेंट के बाद भी काफ़ी सारी सर्विसेज मिलती है, और मैं कहना चाहूँगी ये डिज़र्व करती है इंडियन आर्मी, ये डिज़र्व करती है, क्योंकि पूरी लाइफ आपने जो ट्रेनिंग के दौरान बताया, इतनी सारी चीज़ें आप लोग सर्वाइव करते हो, तो ये आप लोग डिज़र्व करते हो। एंड जहाँ तक मैं जानती हूँ कि जो कोई भी आर्मी मैन आफ्टर रिटायरमेंट भी सर बैठता नहीं, वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करता ही रहता, तो आपने रिटायरमेंट के बाद क्या क्या किया सर?
हाँ, मैंने एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद बुक्स पब्लिश की और बुक्स लिखी, मोटिवेशनल बुक्स लिखी, और 12 बुक्स पब्लिश हैं मेरी अभी जो कि अमेजोन पर अवेलेबल हैं। जैसे उसमें रियल इंस्पायरिंग स्टोरीज, एक बुक है अनसंग हीरोज, एक बुक है गेम चेंजर्स, एक बुक है टॉर्च बेरर्स, एक बुक है 101 वेज ऑफ बिकमिंग बेटर, एक बुक है फीलिंग ग्रेट नो मैटर व्हाट, एक बुक है एक बुक है 101 वेज ऑफ बिकमिंग बेटर, एक बुक है गेटवे टू ए चैलेंजिंग आर्म्ड फोर्सेस करियर। तो ये सब किताबें क्या है, इसमें मोस्टली स्टोरी, रियल स्टोरीज पब्लिश की है मैंने, उन लोगों की कहानियाँ जिन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और सक्सेस प्राप्त की। तो ऐसे लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज हैं, उनके फोटोग्राफ के साथ हैं। जिस व्यक्ति ने काम किया है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स में हो, बिजनेस में हो,
कोई स्टोरी आप शेयर करें सर।
उसमें ऐसे एक स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है, एक लड़की छत्तीसगढ़ की थी, वो 8th-9th क्लास में पढ़ती थी, और बहुत ही आदिवासी एरिया विलेज था, तो वहाँ पर उसके फादर बहुत छोटे किसान थे, तो उन्होंने जैसे गांव में होता है उसकी शादी तय कर दी लड़की की, और शादी तय कर, तो उन्होंने देखा एक गवर्नमेंट ऑफिस में, वो चपरासी था एक लड़का, और गवर्नमेंट ऑफिस का वो एम्प्लॉय मिलना बहुत बड़ी बात है, लोग मानते हैं, शादी तय हो गई। अब शादी के जो पंडित जी फेरे करवा रहे थे, तो फेरे हो रहे हैं, वो लड़की जो है ना, पहला फेरा हुआ, दूसरा, तीसरे जब फेरा, उसने देखा कि लड़का जो है ये खुद नहीं चल पा रहा है, इसको कुछ लोग सपोर्ट करके चला रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं साइड में, वो शराब पी हुए था, तो उस लड़की ने देखा इसके मुँह से स्मेल भी आ रही है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा, तो उसने फौरन वो गठबंधन अलग करके अलग हो गई उससे, कि नहीं मुझे नहीं शादी करना।
जब वो शादी के दिन
उसी दिन
ड्रंक है,
सेम ड्रंक है, तो एकदम अब लोग चौंक गए वहाँ सारे कि क्या हो गया, ये तो कभी, वो तो घर वालों से मनाने की कोशिश, लो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना, ये नहीं। लेकिन उस लड़की ने बिल्कुल फर्म स्टैंड लिया कि नहीं मुझे शादी नहीं करना, ये शराबी है, आज भी दिन जब ये शराब में नशे में है तो मेरे को क्या सपोर्ट करेगा,
पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है।
अब उसके बाद ही क्या हो, नेक्स्ट डे ये खबर एकदम फैल गई सब जगह कि लड़की ने देखो मना कर दिया शादी के लिए, बारात वापस चली गई। और जब ये छत्तीसगढ़ में पूरे न्यूज़ फैल गई, तो डॉक्टर रमन सिंह थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर उस टाइम, तो उनका खबर पहुंची, तो उन्होंने कहा तो बहुत बड़ी बात है, तो उनकी चाइल्ड एंड वेलफेयर मिनिस्टर थी एक, उसने उनसे कहा कि तुम तुरंत जाओ उस गांव में। वो मिनिस्टर गई वहां, उनके पेरेंट्स को मिली, उनके पेरेंट्स के पैर छुए, उस मिनिस्टर ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, लड़की को अच्छे संस्कार दिए कि इसने कम से कम शराबी लड़के से शादी करने से मना कर दिया, हाँ स्टैंड लिया, और उसको उन्होंने कहा बुलाओ रायपुर में कैपिटल में, वहां पर उसको पब्लिकली ऑनर किया गया लड़की को, उसने उज्ज्वला, तो उज्ज्वला वाहिनी हम एक ग्रुप बनाएंगे जो जगह जगह जाके लड़कियों को मोटिवेट करें कि पढ़ाई लिखाई करो और शराबी लड़कों को सपोर्ट मत करो, शादी मत करो।
बिल्कुल,
तो इतना अच्छा एक एग्जाम्पल मिला,
बहुत बड़ी बात है कि लड़की ने शादी के दिन शादी तोड़ा, काफी करेक्ट डिसीजन लिया उसने।
तो बहुत लोगों की कहानियां मिली, बहुत सारी उसमें, एक 51 स्टोरीज एक बुक में है, 51 स्टोरीज हैं, अलग अलग 51 कलेक्शन है अलग अलग बुक्स में।
नहीं, बुक के नेम से ही मुझे समझ में आ रहा है कि नो
ये
मैटर,
सब हिंदी में भी इंग्लिश में भी हैं, कुछ बुक्स हिंदी में ट्रांसलेट हो गई हैं, कुछ अभी बाकी होना।
ओके सर, एंड इसके अलावा सर?
इसके अलावा हम लोग स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के लिए लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने के लिए और उनको बोलने का मौका देने के लिए, ये प्रोग्राम लर्निंग फ्रॉम लेजेंड्स। लर्निंग फ्रॉम लेजेंड्स में हम लोग क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट लेते हैं 9th क्लास के ऊपर, उनको बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, रतन टाटा हैं, इनकी क्या क्वालिटीज़ थी जिस कारण इतने महान बने, उस क्वालिटीज़ के ऊपर उन बच्चों को बोलने के लिए कहते हैं, हर स्टूडेंट को 4 मिनट बोलने का मौका देते हैं। ये मोस्टली ऑनलाइन सेशन होते हैं, जूम पर होते हैं, तो उसमें बच्चे बोलते हैं और उनको क्या बोलना है ये हम लोग गाइड करते हैं कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है। 4 मिनट केवल बोलना है, उससे ऊपर नहीं बोलना है। और उसमें उनको हम सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन देते हैं, दिस फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए हम कोई पेमेंट चार्ज नहीं करते किसी से। और ये बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, अब तक हम लोगों ने 6 सेशन कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग एक और सेशन चाहते हैं, बिकमिंग बेटर सीरीज। बिकमिंग बेटर में हम वो बातें बताते हैं बच्चों को जिनको स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती हैं,
जैसे
हाउ टू फेस फेलियर, हाउ टू फेस क्रिटिसिज्म, हाउ टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, हाउ टू अवॉइड मोबाइल एडिक्शन। हम लोगों ने सेशन किया था भी मोबाइल एडिक्शन के ऊपर, बच्चों ने बोला इसके ऊपर 1 घंटे का सेशन था कि कैसे मोबाइल की लत को हम लोग इससे बच सकते हैं।
मोबाइल एडिक्शन आज के टाइम में बहुत ही कॉमन चीज हो गई है सर,
बहुत छोटे से बड़े सब लोग परेशान। एक हमने सेशन किया OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आज देखिए नेटफ्लिक्स हैं, ये जो हॉटस्टार वगैरह हैं, अमेजोन प्राइम है, इनमें बहुत सारे जो वेब सीरीज चल रही हैं इनमें गाली गलौज से भरे हुए हैं। उसमें लिखा होता है जनर में फाउल लैंग्वेज, ऊपर लिखा होता है वायलेंस, ऑब्सेनिटी, तो ये सब चीजें लोगों को परोस रहे हैं।
कहीं ना कहीं OTT प्रोग्राम्स में जो दिखाया जा रहा है इतना ज्यादा वायलेंस दिखाया जा रहा है, अब्यूजिंग लैंग्वेजेस यूज किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो 12-15 साल के बच्चे हैं, 18-20 साल के बच्चे हैं, वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा है वो चीजें रिपीट करने में। तो मैं भी बिल्कुल भी इस चीज से कम्प्लीटली एग्री करती हूँ कि मैं तो इसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ।
तो उस सेशन में बच्चों ने बताया कि OTT प्लेटफॉर्म में क्या अच्छी चीजें हैं, क्या हम लोग अच्छी चीज सीख सकते हैं और क्या चीज अवॉइड करना चाहिए,
गुड एंड बैड दोनों एस्पेक्ट्स हैं।
तो इसमें क्या होता है, पहले हम लोग कोई एल्डर्स अगर स्कूल के कॉलेज के बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे उतने रिलेट नहीं करते, अभी क्या हम लोग बच्चों से ही बुलवाते हैं क्या बोलना है वो हम बच्चों को गाइड करते हैं, तो बच्चे ही बोलते हैं जब, तो बच्चे रिलेट करते हैं। और बच्चों ने बहुत अच्छे फीडबैक दिए इन सेशंस के, उनके पेरेंट्स ने बहुत अच्छे फीडबैक दिए कि बच्चों को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है सीखने का और बोलने का।
आपने जो एक सेशन बताया हाउ टू फेस फेलियर, इसके लिए जहाँ तक मेरा ओपिनियन है सर, सबसे ज़्यादा इसके लिए पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जहाँ तक मैं देखती हूँ सोसाइटी में, वो बच्चों बचपन से ही उनके माइंड में ना एक कंपटीशन वाली भावना डाल देते हैं कि आपको उनसे बेटर लाना है या आपको इतने परसेंटेज आने ही चाहिए। अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है तो उसे पॉजिटिव वे में उसे सही करने के बजाय आप उसे डांट रहे हो, उस पर चिल्ला रहे हो कि आप इस चीज़ में वीक हो एंड आपको ये चीज़ मैं नहीं दिलाऊंगी क्योंकि आप इस चीज़ में वीक हो, या उसके बच्चे ने ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाया आपसे, तो उसके माइंड में शुरू से नेगेटिविटी जा रही है। जबकि दोनों एस्पेक्ट्स है, या तो आप पास हो गए या तो फेल हो गए, या अच्छे नंबर आएंगे या खराब नंबर आएंगे, लेकिन आप उस चीज़ से फाइट करने के बजाय आप उस चीज़ को उसके माइंड में डाल रहे हो कि आप किसी के लायक नहीं हो, तो ये चीज़ मुझे लगती है। बाकी आप अपनी
सही बात है, देखिए हमेशा बच्चों का है ना, सबसे सब्जेक्ट तो ठीक है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बच्चे, अपनी हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है परफॉर्म करने की, उसकी अपनी ही शुड पुट इन हिज बेस्ट, हिज और हर बेस्ट, जितना वो मैक्सिमम कर सकता है, उसे प्रेशर नहीं डालना चाहिए बहुत ज्यादा। क्या भाई पेरेंट्स क्या है ना, अपने सपने बच्चों में जीते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मैं ही नहीं बन पाया, बच्चे को ये कराना है, तो बच्चे को प्रेशर डाल डाल के आजकल बहुत सारे डिप्रेशन के हो रहे हैं, सुसाइड्स के हो रहे हैं, तो इससे बचने के लिए बच्चे को फ्रीली पढ़ने दीजिए, हमेशा पढ़े सिंसियरली, अच्छे नंबर लाए, अपने आप से कॉम्पीट करे। अभी लास्ट टाइम मेरे 60 आए थे, अब 65 आना चाहिए, अब 65 और 70 आने, धीरे धीरे बच्चा प्रोग्रेस करेगा, वो ज्यादा अच्छा है। तो बच्चों को प्रेशर ना डालें, ये ज़्यादा अच्छा है, बच्चे को अच्छा इंसान बनाएं, सबसे ज़्यादा जरूरी मैं समझता हूँ खुश रहना सीखें, बच्चे अपने में विश्वास करना सीखें। बच्चों को ये होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पे कर रहे हैं।
बेसिकली सर 2-3 बात आपने बहुत अच्छी कही कि हमने बचपन से ही बच्चों को ना एक रेस में लगा दिया कि आपको स्कूल जाना है, आपको ट्यूशन जाना है, आपको स्पोर्ट्स में भी जाना है, आपको एक्सरसाइज भी करना है, उनके बच्चे अभी डांस कंपटीशन कर रहे, आपको डांस भी करना। हम अपने बच्चों को पता नहीं रोबोट समझ लिए, लेकिन हम अपने बच्चों को मैनर्स सिखाना भूल गए, अपनी संस्कृति सिखाना भूल गए, हमारे जो भी हमारे रिचुअल्स है वो बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अच्छा इंसान, जैसे आपने कहा सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए, तो आप अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए मुझे नहीं लग रहा है कोई ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, सिर्फ आप सक्सेस बनाने में एफर्ट लगा रहे हो, अच्छा इंसान बनाने में एफर्ट नहीं लगा रहे हो, तो इस जगह पेरेंट्स फेल हो रहे हैं।
जी 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 सही बात
जी। तो आपने ऐसे कैसे केसेस देखे हैं सर?
एक्चुअली हम बहुत सारे केसेस स्टूडेंट्स के देखते हैं जो डिप्रेशन में चले। अभी रिसेंट लास्ट मंथ की बात है, एक लड़की नीट का एग्जाम दे रही थी, उसके फादर से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा वो डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में लिखी, बोलो बहुत अच्छी स्टूडेंट, बहुत पढ़ाई करती, लेकिन वो कहती मुझे और ज़्यादा नंबर आने चाहिए, उसके फ्रेंड से कंपेयर कर रही वो, उसके ज़्यादा आ गए। तो मैंने उसको बताया, काउंसलिंग की बात की उसके फादर से, उससे भी की, तो धीरे धीरे क्या है ना, बच्चों को ये ज़्यादा आ गया कि उससे कॉम्पीट करना, क्योंकि नीट एग्जाम क्लियर करना नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, सब कुछ नहीं, हम एक अच्छे इंसान बने, खुश इंसान बने, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हम अच्छे से खान पान रखें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये ज़्यादा जरूरी है।
तो बेसिकली हम लोग को अपने बच्चों को ना दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में समझाना चाहिए कि दोनों चीज़ें लाइफ में पॉसिबल है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो।
जी
ओके सर, एंड मैं चाहती हूँ सर आज आपसे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई, व्यूअर्स को भी बहुत सारी बातें आज पता चली होगी, तो मैं चाहती हूँ कोई ऐसे 3 गुरु मंत्र आप अपने बच्चों को दीजिए सर, जिनको आप मतलब चाहते हैं समाज में आगे लाना है, एक अच्छा इंसान बनना है या उन्हें आर्मी ज्वाइन करना है, तो क्या 3 गुरु मंत्र क्या है सर?
जी, ये सबसे पहले तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बोथ। फिजिकल हेल्थ में आता है लाइफस्टाइल, क्या खान पान हमारा है, कब हम सो रहे हैं, ऐसे रात को 2 बजे तक जगे हुए हैं, क्या हम देख रहे हैं, कंटेंट, हम दिमाग में क्या कंटेंट डाल रहे हैं, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, तमाम कचरा टीवी के माध्यम दिमाग भर, तो कचरा दिमाग में भरने से डिप्रेशन भी होता है और कई और प्रॉब्लम आती है हमें, तो फिजिकल मेंटल हेल्थ जरूर फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट इज कि आपको अपने ड्रीम्स को जीना है, हैव योर ड्रीम। हर बच्चे को क्या, हर इंसान को अपना एक ड्रीम होना चाहिए कि मुझे 5 साल बाद क्या करना है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, कि अपना ड्रीम क्या है और उस ड्रीम के लिए हम क्या कर रहे हैं। अपने एक गोल होना चाहिए, भाई मुझे ये करना है, अब मुझे अगले 5 साल में ये करना है। थर्ड पॉइंट है कि टाइम का, टाइम इज अ मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स, तो टाइम को हम बहुत ध्यान से केयरफुली यूज करें, एक बार टाइम निकल गया वापस नहीं आता कभी, हाँ कहीं टाइम कभी वापस नहीं आता, चला गया, चल यू कांट गो बैक इन टाइम, तो हमें टाइम को बहुत जुडिशियसली केयरफुली यूज करना है, कि हमारे जो हम काम कर रहे हैं हमेशा सोचना चाहिए क्या वो हमारे गोल की तरफ जाने में हेल्प कर रहा है हमें या नहीं कर रहा है, अदरवाइज वी आर वेस्टिंग टाइम,
हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए।
जी, तो हमें 3 चीज, ये हेल्थ के ऊपर होनी चाहिए, दूसरा ड्रीम्स एंड थर्ड इज टाइम।
ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया एंड हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए सर। एंड व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।